ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय हम लोग समझ गए थे कि हम लोग लेट हैं लेकिन सब लोग कुछ न कुछ लेट थे वर्षा का वर्णन चल रहा है, कुछ श्लोक हैं वर्षा ऋतु के और उसके बाद वर्षा कालीन लीला का वर्णन है। पित्वापह पादपः पद्भिः आसन्नानात्ममूर्तयः प्राच्छानास्तपसा श्रान्ता यथा कामानुसेवया। वर्षा काल के पहले वृक्ष क्षीण हो जाते हैं, सूख जाते हैं, परंतु वर्षा काल आने पर पद भी अपने पैरों से चरणों से मूल से अपह पीत्वा जल पी पी करके नाना मूर्तय आसन अनेक प्रकार के हो जाते हैं, हरा नीला और बड़े हो जाते हैं, खिल जाते हैं। वृक्षों को पादप कहते हैं, पादप अर्थ होता है पैर और प का अर्थ है पीने वाले। भगवान ने सृष्टि में अनेक जीव बनाया है तो प्रत्येक जीव एक ही तरह से नहीं खाते हैं। हम लोग मुंह से खाते हैं लेकिन पैर से खाते हैं वृक्ष, तो खड़े हैं लेकिन पैर से रस खींचते रहते हैं। हम लोग भी मां के गर्भ में जब तक थे तो पांचवें महीने में भूख लगती है और पांचवें महीने से खाना प्रारंभ करते हैं लेकिन माल को खाते हैं। मां जो कुछ भी खाती है उसका शेयर बच्चे को मिलता है नाल से। नाल को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? वहां से खा करके आए हैं और अब मां के गर्भ से जन्म लेने के बाद तो मुंह से खाना चालू किया। तो वृक्ष है पैर से खाते हैं और खाते क्या है, वो धरती का रस पीते हैं, वो केवल जूस पीते हैं, रोटी भात नहीं खाते वृक्ष तो उनको पादप कहते हैं। तो ग्रीष्म काल में वे झुलसे रहते हैं लेकिन वर्षा काल में वे जल पी पी करके बड़ा तंदुरुस्त हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे तपस्या करके किसी काम में धंधा में कोई आदमी सुख जाता है लेकिन वही जब उसे फायदा होता है, तपस्या का फल मिलता है तो वह खा करके पहन करके बड़ा फ्रेश हो जाता है, मोटा तगड़ा हो जाता है। तो इससे शिक्षा मिलती है कि कष्ट सहना चाहिए, तप करना चाहिए, तप का फल बाद में मिलता है, बिना कष्ट के कृष्ण नहीं मिलते हैं। हमारे हिंदी भाषा में कहावत है बिना कष्ट के कृष्ण नहीं मिलते। तो पहले दुख उठाना पड़ेगा बाद में उसका फल आएगा। प्रत्येक कर्म का फल आता है, तपस्या दान ब्रह्मचर्य स्वाध्याय और सबसे तो भगवत भजन, इसका फल आएगा। इसीलिए धैर्य रखना चाहिए। जैसे वर्षा में, अरे ग्रीष्म ऋतु में आपने देखा होगा इतनी गर्म हवा चलती है भारतवर्ष में, इतनी गर्म हवा और ऊपर से सूरज की गर्मी रहती है आतप और गर्म हवा, फिर भी वृक्ष सब खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, सूख जाते हैं, मतलब झुलस जाते हैं, पत्ता झड़ जाता है, फिर भी वे रहते हैं। एक दिन इतना दुख से रहने वाले वृक्ष वर्षा काल आने पर खा पी करके खूब पुनः स्वस्थ हो जाते हैं। तो कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, अच्छा दिन भी आ जाता है। खास करके शुभ कर्म करने में यदि कठिनाई हो तो उस कठिनाई के भय से उसका त्याग नहीं करना चाहिए विवेकी पुरुष को। भगवान की कृपा से फल मिलता है, ये इस श्लोक से शिक्षा मिलती है। अब गृहस्थों पर कुछ कटाक्ष कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, गृहस्थों पर, गृहस्थों पर नहीं। सरस्वशान्तरोध शून्यसुरङ्गा पिशारसः गृहे स्वशान्तकृत्येषु ग्राम्या इव दुराशयः। हे अंग, हे प्रिय परीक्षित, वर्षा काल में सरोवरों के तट अशांत रहते हैं, उनमें कीचड़ हो जाता है। आप लोग ने देखा होगा सरोवर जो भारतवर्ष के रहते हैं, खास करके गांव में, गांव के पास अथवा जंगल में भी, तो पानी उसमें बढ़ जाता है और हवा चलती है तो पानी के हिलोरे तरंगे तट पर पड़ती रहती हैं। इसके साथ ही साथ कुछ कांटे भी, कंटक भी बह करके उसमें आ जाते हैं तो किनारे पड़ जाते हैं तरंगों के द्वारा, और कीचड़ भी रहता है। तो कीचड़, घास, कांटे और तरंग खुद, इस तरह से अशांत रोध रहता है सरोवर का तट, अशांत रहता है। फिर भी सारसा, सारस पक्षी तटों पर पड़े रहते हैं। किस लिए पड़े रहते हैं? उनकी दृष्टि रहती है कोई मछली, कोई जलचर जीव मिल जाए, मैं खा जाऊं। और हो सकता है कि उनको चार घंटे के बाद कोई मिले छोटी सी मछली, फिर भी वही पड़े रहते हैं, वहां से हटते नहीं है। जबकि उसमें उनको बड़ा कष्ट होता है, पानी का झकोरा, हवा का झकोरा आता है, पानी की लहरें आती हैं, कांट है, कीचड़ है, फिर भी वहीं कभी कभी तो एक पैर पर खड़े होकर के ऐसे रहते हैं, उसे ध्यान लगाया करते हैं। अशांत रोधासु अपि सरहसु, सरोवरों के अशांत तटों पर भी सारस पड़े रहते हैं। आपने देखा है किसने सारस पक्षी, बड़ा ऊंचा ऊंचा पक्षी होते हैं और वो पड़े रहते हैं केवल आहार के फेर से। ठीक वैसे ही जैसे अशांत कृत बारंबार दुख अनुभव कर, बारंबार दुख अनुभव करता है कि इसमें दुख है, ये है, ये है, लेकिन उसी में पड़ा रहता है। ग्राम्या का अर्थ है अविवेकी गृही जन, है विवेक नहीं है, और दुराशय है। दुराशय का अर्थ है कि गृहम एव सर्वार्थ प्रदम इति दुष्टाभिप्राय, जिसके मन में यह बात बसी हुई है कि गृहस्थ आश्रम ही हमारा सर्व पुरुषार्थ साधित कर देगा, यही हमें परम फल की प्राप्ति कराएगा, यही सबसे श्रेष्ठ है, यही ठीक है, उनको दुराशय कहते हैं। दूसरी अंतःकरण, गृहस्थी से मिलेगा क्या? जैसे सारस पक्षी सरोवर के तट पर पड़ा रहता है डिस्टर्बेंस सह करके भी, किस लिए? बड़ी मछली मिल जाए खाने के लिए। तो गृहस्थ आदमी इतना झंझट बर्दाश्त करके भी घर गृहस्थी में क्यों पड़ा रहता है? कुछ थोड़ा सा सुख मिल जाए। कभी कभी तो हमने देखा है कि लोग अपने बच्चे को डांट देते हैं, कुछ मार देते हैं, तो इस पर भी वो संतोष करते हैं कि चलो इतना तो शासन चल रहा है हमारा घर में। संतुष्ट हो जाते हैं। बहुत भारी लोड है गृहस्थी का, वास्तव में एक्स्ट्रा बैगेज है लेकर के चलना। एक तो देह ही भार है जीवात्मा के लिए, है कि नहीं? ये शरीर ही भार है और उस पर एक और गृहस्थी का भार ले लिए। हाँ, इसीलिए बाद में सिखाया गया है कि दुराशय नहीं होना चाहिए, घर गृहस्थी में रहे, लेकिन ये समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति ही सार है, भगवान से प्रेम करना चाहिए, न कि घर से मिलने वाले सुख से। तो घर गृहस्थी में वास्तव में सभी गृहस्थों का अनुभव है कि टोटल जोड़ जाड़ करके 98% दुख है और 2% सुख है ना। और अनुभव भी होता है लेकिन छूटता नहीं है वहीं पड़े रहते हैं। कुछ सारस तो मरते दम तक पड़े रहते हैं वहीं पर, कम से कम बुढ़ापा में घर छोड़ देना चाहिए, शास्त्र का नियम। तो पहला हमारा वैदिक विभाजन है, पर पढ़ा है तो उसमें तो लिखा गया है कि 50 वर्ष का होने के बाद घर छोड़ देना चाहिए, 25 वर्ष तक अध्ययन करना चाहिए, 25 से 50 वर्ष के बीच केवल गृहस्थ बनने का लाइसेंस है, वैदिक लाइसेंस, इसके बाद नहीं। इसके बाद तो लोग जबरदस्ती गृहस्थ रहते हैं और इसीलिए अनेक प्रकार का दुख होता है। लेकिन इस युग में जाए कहां, आदमी कहां भागे। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि गृह व बने थे था तो सदा हरि बोले डाक, कहीं रहो घर में या वन में भगवान का नाम लो, भगवान के नाम से सुख होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कभी कभी कोई कोई कथाकार गृहस्थों के भय से सब बात नहीं कहते हैं तो उनको बुरा लगेगा। मैं ऐसा देखा हूं कि वो टच ही नहीं करते हैं, नहीं कहते। लेकिन वास्तव में जो हमारे हित के लिए बात बताई गई है उसे और ध्यान से सुनना चाहिए कि शास्त्र हमारे विषय में क्या बोल रहा है। जैसे मान लीजिए मैं सन्यासी हूं और शास्त्र यदि सन्यासी के धर्म का वर्णन कर रहा है तो हमें तो और प्रीति से उसको पढ़ना चाहिए, भाई हमारे हित के लिए सन्यास धर्म का ही उपदेश कर रहा है। तो इसी तरह से गृहस्थों के लिए कोई बात कही जाती है शास्त्रों में तो उन्हें प्रेम से सुनना चाहिए और उस शास्त्र के वाक्य के द्वारा अपनी जो भी कमी पकड़ में आ रही हो तो उसको निकालना चाहिए और गुण अर्जन करना चाहिए। तो प्राय संसार में सभी गृहस्थ हैं और घर गृहस्थी में क्यों है प्रश्न होगा। वे अधिकांश तो दुराशया हैं और ग्राम्य हैं, जो केवल ग्राम्य का अर्थ है कि इंद्रिय सुख के लिए जाते हैं। तो उन्हें थोड़ा सा स्त्री सुख मिल गया, बच्चों का सुख मिल गया और थोड़ा सा कोई पापा कह दिया, मालिक कह दिया, घर का इसी में बस खुश है और इसी के लिए घर गृहस्थी का बोझा उठा है, साबस साबस कह करके ले चल रहा है, जबकि मेहनत कर रहा है फिर भी अब क्या करें। इसे कठिन है, दुखमय गृहस्थी में भी सुख का आधार है, वो है भगवान की भक्ति। अपने घर में यदि ठाकुर जी को रह करके सेवा की जाए, भगवान का नाम जपा जाए, बच्चे स्त्री सभी भगवान के भक्त हों, तब तो गृहस्थ आश्रम भी मंदिर है वास्तव में, वो दुखमय नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए गृहस्थों पर आक्षेप किया जा रहा है तो उसमें भक्तों को वाद करके देखा जाए तो सही में ये इस सारे वाक्य बिल्कुल ठीक, कोई भजन नहीं भगवान का, कुछ नहीं, नाम जप नहीं, और बल्कि वो सारस की तरह मांसाहार भी करते हैं, मांस खाते हैं, घर में पकाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, स्त्री से रोज झगड़ा तकरार सब, लेकिन फिर भी वहीं पड़े रहते हैं। हमारे यहाँ तो गांव में हम देखते हैं कभी कोई आदमी अपने घर से उबता है, खास करके मान लीजिए यदि वो अपने बच्चों से उब करके घर छोड़ दिया तो कुछ ही दूर जाने के बाद उसका बैराग ठंडा हो जाता है और उधर से लौटता है तो सोचता है कि अब कौन बहाना करें। तो मान लीजिए बच्चों से रुस करके रंज होकर के जाता है तो घर पर आकर के कहता है अब तो मैं तुम्हारी माँ का मुख देख रहा हूँ इसलिए मैं लौट आया, नहीं तो मैं नहीं लौटता, बेचारी इसने कोई अपराध नहीं किया। और जब स्त्री पर रंज होकर के जाता है और लौट आता है तो कहता है कि अब तो बच्चों का मुख देख करके लौट आया, नहीं तो तुम्हारे चलते तो मैं कभी नहीं आ सकता। किसी न किसी तरह से उसको आना है, तो मरकट वैराग्य थोड़े देर के लिए होता है। आपने मरकट बैराग देखा है, बानरों का आपस में बैराग,
वानर और वानर हम वृंदावन में देखे हैं कई बार, बात की बात में वो रुस जाते हैं और वानर उधर मुंह करके बैठता है और वानर ही इधर मुंह करके बैठता है और बोलते नहीं। और मान लीजिए अगर वानर मनाने चलता है बानरी को तो मानती नहीं। और कभी कभी तो ऐसा देखा गया कि एक बानर एक बानरी को मना रहा है तो जब ही बानरी मानी मान गई तो ही बानर उधर मुंह कर गया तो वो मनाने लगे। और मनाने में क्या है, उनके शरीर में कुछ जीव पड़ते हैं कीड़े, उनको निकाल निकाल करके खाते रहते हैं, इस तरह से उनके शरीर को सहलाते हैं मनाते हैं। और मान जाने के बाद सैकड़ों बार उनका संग चालू रहता है, यही है उनका वैराग्य जो मरकट वैराग्य कहते हैं।
श्मशान
वैराग्य होता है वो तो खैर कुछ ठीक है, किसी मृतक को देख करके या अपने स्वजनों के मरे हुए शरीर को देख करके वैराग्य होता है जो दुनिया नश्वर है क्या। तो इस तरह से श्मशान वैराग्य, मरकट वैराग्य, गर्भ वैराग्य भी होता है, गर्भ में भी जीव को वैराग्य होता है, लेकिन वो सब ठंडा हो जाता है। तो घर गृहस्थी में दुख है, हमेशा काम करना है, बहुत परिश्रम है, फिर भी ज्यादा लोग गृहस्थ ही है ज्यादा क्या मतलब 10% लोग। और आजकल के विदेशी लोग तो सोचते हैं गृहस्थ भी न रहे सन्यासी भी न रहे, एक फ्री आश्रम चलाना चाहिए, फ्री आश्रम ये कोई जिम्मेवारी न रहे, सोचते हैं विवाह की क्या जरूरत है, अनुभव करते हैं कि ये भार है। लेकिन वैदिक ग्रंथ कहता है कि यदि तुम्हारे मन में थोड़ी भी कामना है वासना है तो तुम्हें गृहस्थ बनना चाहिए, ये धर्म है भगवान का उपदेश। परंतु गृहस्थ जीवन में भगवान का भजन करते रहना चाहिए। अब वर्णन करते हैं कि वर्षा काल में जब इंद्र ईश्वर बहुत अधिक वर्षा करते हैं तो उसके कारण सेतु टूट जाते हैं, खेतों के जो मेड़ होते हैं उनको सेतु कहते हैं या बांध के जो सेतु होते हैं, तो सेतवः निर्भिद्यन्तः फूट जाते हैं, जलौघय निर्भिद्यन्तः सेतवो वर्षति ईश्वरे, ईश्वरे वर्षति। जब भगवान इंद्र वर्षा करते हैं बहुत अधिक तो सब सेतु टूट जाते हैं, बांध टूट जाते हैं, पानी बह जाता है। इसी प्रकार से कलयुग में इतनी वर्षा होती है असदवाद की, पाखंडियों के असदवाद की, पाषंडी नाम असदवाद ही वेद मार्ग पलग जाता, कलयुग में इतनी वर्षा होती है, इतना ज्यादा प्रचार होता है पाखंडियों के असदवाद का कि उससे वेद मार्ग सब टूट जाते हैं, कोई वेद के नियमों को नहीं मानता है, न भोजन के विषय में, न व्यवहार के विषय में, न बोलने के विषय में, किसी विषय में नहीं, क्या खाना चाहिए कोई मर्यादा नहीं, किस तरह पत्नी के साथ रहना चाहिए कोई मर्यादा नहीं, मतलब वेद की जो मर्यादाएं हैं मानव जाति के लिए तुम्हें तो ये करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, सब समाप्त। यह असदवाद के प्रचार के कारण हुआ है, बहुत काल से असदवाद का प्रचार हो रहा है, एक सदवाद है जो श्रीमद् भागवत में सदवाद सही सही सत्यवाद और असदवाद, असदवाद मतलब कंडम अपने मन की बात कहना, जैसे आप लोग सुनते हैं स्त्रियों को स्वतंत्र करो पुरुष के बराबर अधिकार दो, वेद तो ऐसा कहता नहीं है लेकिन असदवाद यह है। और इसी तरह भगवान के विषय में, जीव के विषय में, भक्ति के विषय में बहुत से असदवाद प्रचलित हो गए। एक बौद्धों का वाद है उसको स्यादवाद कहते हैं, स्यादवाद, स्याद का अर्थ होता है हो सकता है, तो उसको स्यादवाद को ही हिंदी में शायदवाद कहते हैं, शायद हो सकता है, कोई भी उपदेश कहते हैं ऐसा हो सकता है, अरे हो क्या सकता है, जो नहीं मालूम है तो कह दो कि मालूम नहीं है, हो सकता है शायद वाद, उस शायद वाद बहुत प्रचलित है बौद्धों, शायद ऐसा हो सकता है अनुमान केवल, लेकिन वैदिक ग्रंथ जो बात बताते हैं वो बिल्कुल दृष्ट बात है। जैसे आप इस शहर की एक गली को जानते होंगे और कोई पूछे तो आप बताएंगे आप ऐसे चले जाइए, ऐसा नहीं कहेंगे शायद ये रास्ता चला जाएगा, शायद ऐसा धोखा में डालने की क्या जरूरत है। तो भगवान ने वेद शास्त्र का उपदेश किया प्रत्येक मानव जाति के लिए, यदि वो गृहस्थ है तो गृहस्थी के कुछ नियम है, सन्यासी है तो सन्यास की कुछ मर्यादाएं हैं, और इसी तरह अन्य आश्रम या अन्य वर्ण के भी कुछ नियम हैं, धन कमाने के भी कुछ मर्यादाएं हैं, किस तरह से धन कमाया जाता है, किस तरह से भोगा जाता है, धन का कितना हिस्सा किस चीज में खर्च किया जाता है, सब कुछ की मर्यादा है। लोक के लिए क्या करना होगा, परलोक के लिए क्या करना होगा, भगवान के लिए क्या करना होता है, वेद सब बताता है, लेकिन पाखंडियों के असदवाद से वेद मार्ग निर्भिद्यंत, वेद की मर्यादाएं सब खत्म हो जाती है। ये तो हम लोग सामने देख रहे हैं, इतना अधिक प्रचार है पाखंडियों का कि उसके चलते लोगों की मसी कृष्ण में आ नहीं रही है। ये तो अत्यधिक वर्षा को देख करके भ्रमण करते हैं, अब पुनः बादलों के द्वारा वर्षा होते हुए देखकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि व्यमुंचन वायु भी नुन्ना भूते व्यस्मृतम घन जथा शिशो विटपत काले काले द्विजेरिता। वायु के द्वारा प्रेरित होकर, वायु भी नुन्ना वायु के द्वारा प्रेरित होकर घना बादलों के समूह भूतेभ्य भूतों के लिए जीवों के लिए अमृतम मुमुचु व्यमुंचन अमृत बरसाते हैं। यह जल वास्तव में अमृत है, जल अगर इस पृथ्वी पर न पड़े तो सब कुछ मर जाएगा, जीवन नहीं हो सकता है। जल का एक नाम है जीवन, जामुन जीवन केली पर आया है, जमुना के जीवन में कृष्ण केली करते हैं, वहां जीवन का अर्थ है जल, और वास्तव में जल जीवन है कि नहीं। ये जितने जीव जी रहे हैं जल के कारण जी रहे हैं, और इस जल को अमृत कहा गया है, इसके अलावा सब मर जाएंगे, पानी नहीं है तो मर जाएंगे। तो बादलों के द्वारा जो जल बरसता है उसको यहां अमृतम कहा गया है, अमृत। बादल हवा के द्वारा प्रेरित होकर जल बरसाता है, हवा प्रेरणा देता है, इधर से उधर ले जाता है, झकझोरता है तो बादल वर्षा कर, बादल में दया है, धन बादल का है, वायु का धन नहीं है, वह जल जो है वो मेघ का है, हवा का नहीं है, लेकिन हवा उसे प्रेरित करता है बरसाने के लिए। जैसे ठीक वैसे ही जैसे काले काले समय समय पर द्विजेरिता विटपतय ब्राह्मणों के द्वारा प्रेरित होकर, शास्त्रज्ञों के द्वारा प्रेरित होकर विटपतय वैश्य के गण समय समय पर दान दिया करते हैं, जनता को बरसाते हैं, धन रहता है धन कमाने वाले राजा के पास या वैश्य के पास, लेकिन उन्हें दान देने के लिए ब्राह्मण प्रेरित करते हैं कि यहां दीजिए, ऐसे दीजिए, यहां जरूरत है, ये है वो है, ये योग्य पात्र है, यहां बहुत आवश्यकता है, तो ब्राह्मणों के द्वारा प्रेरित होकर के वे वर्षा करते हैं। दान करना चाहिए तो वर्षा जैसा करना चाहिए, बादल वर्षा करते हैं। वास्तव में इस संसार में मनुष्य में सबसे बड़ा गुण यही है, क्या? देने का गुण। देने की आदत जिसमें हो गई, अपने औकात के अनुसार ही, अपनी स्थिति के अनुसार है, तो वो बहुत महान व्यक्ति माना जाता है। एक नीति श्लोक में लिखा गया है कि तुम्हें चाहिए, यदि तुम्हारे पास धन नहीं है, एक कवर भोजन तुमको मिल रहा है तो उसमें से आधा कवर दान दे दो। शास्त्र एक ग्रंथ में लिखा गया श्लोक में, आधा कवर दान दे दो। तो वह व्यक्ति पूछे कि अरे मेरा पेट कैसे भरेगा, अब मैं आधा कवर इसमें से भी दे दूं, ये कैसे दान देने को कहते हैं? तो नीतिकार कहता है कि क्या मनुष्य के इच्छा के अनुसार कभी धन हुआ है? उसको तो एक कवर भोजन है वो नहीं दान दे रहा है मान लीजिए, लेकिन जिनके पास अरबों खरबों डॉलर है वो भी तो नहीं दे रहे हैं। तो यह दान की प्रवृत्ति धन पर निर्भर नहीं करती है, यह एक मानसिक गुण है मनुष्य में, उसके पास जो कुछ भी होता है वो देना जानता है, देता रहता है, और देने वाला हमेशा ऊंचा है। एक श्लोक में कहा गया है कि देखो, दान देने वाला हमेशा ऊंचा रहता है और दान लेने वाला नीचे रहता है। ऐसे दान देने में भी जिस कोई देता है तो उसका हाथ ऊंचा रहता है, लेने वाले का नीचे रहता है। और भी देखते हैं कि समुद्र को पयोधी कहते हैं, पयाधी, पयाधी का अर्थ है जो जल को रखता है, जल का खजाना, और बादल को पयोध कहते हैं या जलद, वो जल देता है। तो देने वाला हमेशा ऊंचा है और लेकर के संग्रह करने वाला हमेशा नीचे, समुद्र नीचे पड़ा हुआ है और दान करने वाला ऊपर घूम रहा है। पयोधी नाम अधस्थिति, पयोदा नाम ऊर्ध्वगति, ऐसे कुछ श्लोक है। जल जो दे रहा है ऊपर है, और जल का जो जिसके पास भंडार है इतना, फिर भी नीचे रहना पड़ेगा, समुद्र को नीचे रहना पड़ रहा है। तो ऐसे तो दानशीलता है ही बादलों में या किसी धनी आदि में है। वीट पता है का वैश्यपति, वैश्यों में जो श्रेष्ठ हैं धन कमाने वाले, तो धन तो उनके पास होता है और दान देने की प्रवृत्ति भी रहती है, लेकिन ब्राह्मणों के इंस्ट्रक्शन से वे जगह जगह पर दान करते, वर्षा करते। तो जिस प्रकार बादलों से प्रेरित होकर घन अमृत जल की वर्षा करते, इस प्रकार से वर्षा ऋतु का वर्णन समाप्त हुआ। अब वर्षा काल में भगवान श्री कृष्ण की होने वाली लीला का वर्णन करते हैं। तो एक श्लोक में श्री कृष्ण के वन प्रवेश की लीला कह रहे हैं, किस तरह वे प्रवेश करते हैं वर्षा कालीन वन में। एवं वनम तद वर्षिष्ठम पक्व खर्जूर जम्बुमत गो गोपाल वृतोरम तुम सबल प्राविशद हरि। एवं वर्षा कालम वर्णित्वा तत्फलम श्री भगवतः क्रीड़ा विशेषम वक्ष्यन आदो वन प्रवेशम आह। वर्षा काल का वर्णन हुआ, लेकिन वर्षा काल के वर्णन का फल क्या है? वर्षा काल में श्री कृष्ण की लीला का वर्णन, ये फल है। तो अब लीला का वर्णन करते हैं, वन प्रवेश लीला। गो गोपाल वृत, श्री कृष्ण गौओं से और गोपालों से घिरे हुए, वृत परिवेष्टित सबल बलराम जी के साथ हरि सर्व मनोहर हरि कृष्ण एवं इस प्रकार वर्षिष्ठम समृद्ध वन में प्रवेश किए, जो जिस वन में खजूर और जामुन पक गए थे। वर्षा काल में जामुन और खजूर पकते हैं ना, तो उसमें वृंदावन में सब और खरजूर और जम्बू में जामुन के पक गए थे, उस वन में प्रवेश किए। तो प्रवेश करने में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गो गोपाल वृत, गौओं से और गोपालों से घिरे हुए, चारों तरफ घेरे थे कृष्ण को। क्यों? श्रीमुख शोभा लोभेन, भगवान श्री कृष्ण के मुख की शोभा देखने के लोभ से सब घेरे थे। चलते थे तो उनके मुख पर देखा करते थे, देखते हुए सब प्रवेश कर रहे हैं। वन की विशेषता बता रहे हैं, पक्व खरजूर जम्बुमत, खरजूर को ही खजूर कहते हैं और जम्बू को जामुन कहते हैं। वर्षा काल में, वर्षा के प्रारंभ में जामुन और खजूर पक जाते हैं, हम लोग खूब खाए हैं वर्षा काल में इस तरह जामुन और खजूर। इसलिए सहज समझ में आ रही है बात। और सबलह प्राविशद, श्री बलराम जी के साथ प्रवेश किए, ये प्रवेश लीला है। और प्रवेश करके क्या क्या लीला की अब छह श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहले गौओं का वर्णन कर रहे हैं और गौओं को किस तरह श्री कृष्ण बुलाते हैं तो वे दौड़ करके आ जाती हैं, इस लीला का वर्णन कर रहे हैं। धेनवो मंदगामिन्यः उधो भारेण भूयसा जयुर्भगवता हूता द्रुतं प्रीत्याश्नुतस्तनः। भूयसा उधो भारेण, बहुत बड़े थन के भार से, उधर माने पयह कोष, दूध का कोष, गौओं के पिछले पैर के पास थन होता है, दूध का कोष कहते हैं, पयह कोष। या पयोधर भी कहते हैं उसे। तो ब्रज में अच्छे सुंदर घास मिलने से और भगवान के साथ रहने के कारण गौओं के बड़े बड़े थन थे, उसमें दूध भरे रहते थे। तो बड़े बड़े थनों के कारण मंद गामिन्य गौएं बहुत धीरे धीरे चल पाती थी। थन इतने बड़े बड़े थे कि वो धीरे धीरे चलती थी, लेकिन जब भगवान बुलाते थे नाम रख करके भगवता आहूता, तो उस समय प्रीत्या द्रुतम जयू दौड़ कर कृष्ण के पास जाती थी। ये देखिए प्रीति की विशेषता, अपने आप चलने में मंद गति थी, मंद गामिन्य, लेकिन जब कृष्ण बुलाते थे तो द्रुतम जयू तेज गति से जाती थी। बहुत आनंद आता था श्री कृष्ण के पास जाने में, और उस समय स्नुतस्तम स्तना उनके अस्तनों से दूध गिरते रहते थे वात्सल्य के कारण। प्रत्येक गौ में चाहती थी कि श्री कृष्ण हमारा दूध पिए, और डायरेक्ट, यह नहीं कि बछड़ा पी ले उसके बाद दूध करके पिए, और प्राय श्री कृष्ण गौओं का दूध डायरेक्ट पिया करते थे उनके अस्तन में मुंह लगा करके और पिया करते थे। ये था वात्सल्य गौओं का, भगवान का इतना प्रेम था, इसलिए तो उनको गोपाल कहते हैं। भगवान इस जगत में आकर के गौओं का पालन करके दिखाते हैं, ये भगवान का कार्य है गोरक्ष। तो भगवान से इस तरह प्रेम करती थी गौएं कि उनके बुलाने पर बहुत तेज गति से चलती थी। बनौकसः प्रमुदिता वनराजी मधुच्युतः जलधारा गिरेर्नादान आसन्ना ददृशे गुहा। बनौकसः प्रमुदिता, बनौकस कहते हैं वन में जिनका ओकस है, ओकस कहते हैं निवास घर। वन में रहने वाले कोल भील पुलिंद आदि बहुत हर्षित थे, वृंदावन में रहने वाले। बनौकसः प्रमुदिता और वनराजी मधुच्युतः, वनराजी कहते हैं वृक्षों की श्रेणी को, वृक्षों की जो श्रेणी थी उनमें से मधु चू रहा था, मधु श्रावित होता था उनके फूल से फल से। और गिरे है जलधारा, पर्वत में इतनी जलधारा गिरती थी, कभी कभी गुहा के भीतर धारा गिरती थी तो बहुत आवाज आती थी, सुनाई पड़ती थी, धारा दिखाई नहीं पड़ती थी लेकिन आवाज सुनाई पड़ती थी कि जल बह रहा है बह रहा है। इस तरह से कृष्ण सुनते थे, ऐसे वृंदावन को देखते थे, खास करके गोवर्धन के गुफाओं में श्री कृष्ण इस तरह के शब्द सुनते थे, और सखाओं से बताते थे देखो कितना सुंदर शब्द आ रहा है। क्वचित वनस्पति क्रोड़े गुहायां च विवर्षति निर्विशन भगवान वे में कंदमूल फलासन। कभी कभी अकस्मात वर्षा होने लगती थी, जैसे हम लोग देखे हैं जा रहे तब तक वर्षा होने लगी, वर्षा होने लगती थी तो श्री कृष्ण तुरंत भाग करके किसी पर्वत के नहीं वृक्ष के क्रोड़ में समा जाते थे। क्रोड़ का अर्थ यह दो है, वृक्ष के मूल में और वृक्ष के खोड़हर में, कोटर में। अब समझते हैं किसी किसी वृक्ष में कोटर होता है, खाली जगह रहता है बड़ी तना में, तो भाग करके उसमें समा जाते थे और बच रहे हैं, और भी सखा उनके साथ सट करके खड़े और वर्षा हो रही है। एक बार एक भक्त प्रश्न किया था बिहार में कि क्या इंद्र भगवान ऐसे क्यों वर्षा कर रहे हैं कि भगवान भीगने के डर से भाग रहे हैं। तो वास्तव में इंद्र भक्त हैं और वे जान बुझ करके वर्षा कर रहे हैं भगवान को सुख देने के लिए। तो वर्षा करने पर कृष्ण कुछ तो भीगते हैं, इसके बाद भाग करके आकर के वृक्ष के कोटर में समा जाते हैं, अथवा गुहायाम च, अथवा पर्वत की गुफा में समा जाते हैं, और वर्षा के खुलने की, वर्षा के बंद होने की प्रतीक्षा करते हैं, जब खुलेगा तो चलेंगे, और जब वर्षा नहीं खुलता, हाँ वर्षा जब खुलता है तब बाहर निकल करके कंद मूल फलासन, कुछ देर हो जाता है इसलिए अब भोजन करते हैं। क्या भोजन करते हैं? कंद मूल फलासन, कंद खाते हैं। कंद का अर्थ होता है वर्तुल आकार का एक मूल होता है, इसको कंद कहते हैं। वर्तुल माने गोलाकार, गोलाकार और बहुत बड़ा जिसका मूल होता है और कोई गोला नहीं होता है उसको मूल कहते हैं। ये पृथ्वी में दोनों बैठते हैं, कंद और मूल धरती में बैठते हैं। इन दोनों को भगवान खाते थे। आजकल के कुछ लोग हैं जो धरती में बैठने वाला चीज नहीं खाएंगे, भले खून बिना छाने पी जाए। हमारे यहाँ एक व्यक्ति थे वो राजस्थान के, कृष्णचंद्र अग्रवाल गीता प्रेस गोरखपुर में रहते थे। थोड़े विनोद में कहा करते थे कि जैनी लोग पानी छान कर पीते हैं लेकिन खून बिना छाने पीते हैं, खून पीने में छानते नहीं है, वो तो बिना छाने पी जाते हैं। जो कुछ भी हो, यहां भगवान के लिए कहा जा रहा है कि धरती में बैठने वाले कंद और मूल को खाते थे। सवेरे के समय ब्रेकफास्ट करते थे फल से, और इसके बाद लगभग जब दोपहर होता था लंच में क्या लेते थे, दध्योदनम समानीतम शिलायाम सलिलांतिके संभोजनीय दुग्ध गोपा संकर्षणान्वित। दध्योदनम समानीतम, ओदन मतलब भात, दही और भात आता था दोपहर के समय, कुछ सेवक लाते थे वन में, सवेरे में लोग लेकर के नहीं आते थे, कुछ सेवक थे जो लेकर के वन में आते थे। सभी घरों से दही भात आता था उन गोपों के लिए खाने के लिए, बिल्कुल ताजा। दधि ओदनम समानीतम, सम्यक आनीतम, बहुत पैक करके अच्छी तरह से आता था, बहुत ढंग से आता था। तो श्री कृष्ण कहां खाते थे, वर्षा के कारण शिला साफ हो जाते थे, पत्थर की चट्टान बिल्कुल स्वच्छ हो जाती थी, तो उसी पर सब सखा बैठ करके और पत्थर पर डायरेक्ट परोस करके दही भात स्नान करके खा। कोई पत्तल बनाने की आवश्यकता नहीं थी। और पानी कैसे पीते थे, तो इसीलिए कहते सलिलांति के, जल के पास ही बैठते, चारों तरफ वर्षा हुई है और पत्थर पर पानी जमा हुआ है बिल्कुल स्वच्छ, वैसे खा रहे हैं बीच में पानी पी करके फिर खाते। कोई लोटा गिलास की जरूरत नहीं है, ये सब बहुत ज्यादा सामान रखने से उसको धोने में संभालने में जीवन का टाइम बीतता है वास्तव में। इसीलिए जो लोग बहुत विरक्त हो जाते हो तो कोई बर्तन नहीं रखते हो, करपात्री हो जाते हैं, हाथ में खाते हैं। आजकल के साधु हैं कि एक एक साधुओं के पास 50-50 गिलास पड़ा रहे, कटोरी ये धो वो धो, और एक बैग बर्तन ही बंद करके चलो जहां भी ट्रेवलिंग करना है। तो मौसी के लिए त्रिदंड और एक कमंडल काफी है, दंड और कमंडल करते, कमंडल जलपात्र, पता नहीं कब कहां जरूरत पड़ जाएगा जल का, इसलिए जल लेकर के चलना जरूरी। अब तो कमंडल लेकर नहीं चलते हैं लेकिन थर्मस लेकर के चलते हैं, वो भी कमंडल ही है, जो भी आज आधुनिक युग का वो कमंडल है। भगवान जब गाय चराने आते थे तो अपने साथ बहुत बर्तन बांध करके नहीं आते थे, वो तो खेलते थे कूदते थे, भोजन आया तो अभी ये नहीं कि अब प्लेट आएगा, प्लेट बांध करके लाओ, ये करो वो करो, या प्लास्टिक का कुछ भी नहीं, पत्थर पर खा लेते थे। आज भी पत्थर पर जहां कृष्ण खाए हैं वो चिन्ह पड़े हुए, जिसको भोजन थाली कहते हैं, काम वन में या भोजन थाली है, बिल्कुल थाली के आकार का पत्थर बना है कई जगह अपने आप प्रकृति के द्वारा, तो उस पर श्री कृष्ण खा लेते थे और खा करके पानी से ला करके धो देते थे। इस तरह से सादा जीवन, उच्च विचार, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाई लिविंग, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। और आज के युग में क्या हो गया है, हाई लिविंग और सिंपल थिंकिंग, आहार निद्रा भय मैथुन चार, बस खाने पीने में मस्त लगे हुए, और लिविंग इतना हाई है कि तो सब देख ही रहे कितना खर्च एक आदमी में हो रहा है, बिल्कुल हाई लिविंग। भगवान खा रहे पत्थर पर,
और दही भात खा लिए, कंदमूल फल खा लिए, देखिए भगवान क्या आहार करते हैं। इससे तो वेजिटेरियन सबको हो जाना चाहिए इस दुनिया में, एक भगवान तो वेजिटेरियन है और दही भात खा रहे हैं, खूब सुंदर दही। आजकल के स्टोर का जमा हुआ दही वो नहीं था जिसमें से मक्खन निकाल दिया गया है, और ये वैसे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। और आज के युग में क्या हो गया है, हाई लिविंग और सिंपल थिंकिंग। अजन एक हमको राज, सभी भाइयों को राज देना चाहिए, हमको क्यों दे रहे हैं? तो ये कह रहे हैं कि जन्मे एक संग सब भाई, हम भाई जन्म साथ साथ लिए, भोजन शयन केल लड़काई लड़कपन आदि सब बीता साथ में, तो विमल वंश यह अनुचित एक बंध बिहाई बड़े ही अभिषेक। इस पवित्र वंश में यह बहुत अनुचित बात है कि अन्य भाइयों को छोड़कर बड़े को ही राज तिलक दिया जाता है। कितना ऊंचा विचार भगवान का है, उनको राज दिया जा रहा है तो कहते हैं कि गलत हो रहा है, तो गलत नहीं हो रहा था, जेठ बेटा राज्य का अधिकारी होता ही है, तो इसलिए उसको दिया जा रहा था। तो जो भी है उसमें यह ध्वनित होता है कि भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ खाते थे, तो भगवान श्री कृष्ण समस्त सखाओं के साथ खाते, संकर्षण के साथ खाते थे। भोजन एक घर से नहीं आया है, भोजन अनेक घर से आया है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे घर से अच्छा आया है तो हम अपना अलग खा लिए और उसके घर से इन्फेरियर आया है तो बेचारा वो खा रहे, नहीं, सारा भोजन एक जगह रखा जाता था और सबका भोजन सबको परसाया था। ये भोजन की स्टाइल भगवान कितना सुंदर आचरण कर रहे हैं, उस तरह खा रहे, और खाते समय ऐसा नहीं था कि बस जल्दी खा लिया चलो गाय चराना है, हा हा हे ही ठाठा हो रहा है, खूब खा रहे हैं। और कोई भी सखा कोई चीज खाता था उसको बहुत अच्छा लगता था तो तुरंत आता था कृष्ण के पास और कहता था कृष्ण ये बहुत मधुर है, ये खाओ, अपना जूर था। और श्री कृष्ण कहते थे अच्छा मीठा है, ठीक है दोनों खाते थे, कहते हाँ सखे ये तो बहुत मीठा है और प्रत्येक सखा इस तरह से अपना उनको जूठा देता था, उनको ये नहीं भावना थी ये भगवान है और यज्ञ पुरुष है, यज्ञ भोक्ता है इस तरह खाते थे। तो वर्षा काल में कंदमूल फल उसके अनुसार वे खाते थे, कंदमूल फलासन में फल भूल गए, फल खाते थे, तो फल कहाँ से, दुकान से खरीदा हुआ नहीं, वन में जो फल मिलता था जामुन खजूर ये सब भगवान खा लेते, भोजन लीला का वर्णन। और कहते हैं कि सात दलों परिश्रम विश्व चर्वतो मिलते क्षण तृप्तान वृषान वत्सतान गास्त शोधो भरस्वना। तो भगवान श्री कृष्ण देखते थे गऊओं को, गौए सादल ऊपरी हरी हरी दूब के ऊपर बैठकर आंखें बंद करके और चरवण कर रही। गौए दो बार खाती हैं, एक बार तो घास खा लेती हैं, दूसरी बार उसको भीतर ही भीतर चबाती रहती है मुंह में बार बार, उसको चरवण कहते हैं, जुगाली कहते हैं। तो आंखें बंद करके और बिल्कुल चरवण करती थी, मतलब पूर्ण तृप्त थी, तृप्ता। इसी प्रकार से बैल या बाछी गाय सब तृप्त थे, बड़े बड़े थान थे उनके। तो सर्वकाल सुखावहम, सब समय में सुख देने वाले वर्षा काल की शोभा को देखकर भगवान उसका आदर किए, प्रशंसा किए कि वर्षा काल कितना अच्छा काल है, देखो गौओं को पर्याप्त भोजन मिल रहा है, यह सुख है वह सुख है। यद्यपि वह वर्षा काल आत्मशक्ति प्रबृंगिताम, भगवान की स्वरूप शक्ति से प्रकाशित हुआ है, भगवान स्वयं वर्षा काल को बनाए हैं, घास बनाए हैं, सब कुछ बनाए, लेकिन फिर भी प्रशंसा कर रहे थे कि देखो वर्षा काल कितना अच्छा है। तो इस तरह वर्षा कालीन लीला भगवान की समाप्त होती है। अब शरद काल का वर्णन आ रहा है। एवं निवसतस्मिन् राम केशवयोर् ब्रजे शरद समभवत व्यभ्रा स्वच्छां परुषा नीला शरदं वर्णयति एवं। हम लोग आज जहां गए थे सौनक ऋषि दास जी के घर में, तो उसमें शरद बिहारी जी रहते हैं, श्री श्री राधा शरद बिहारी। तो बड़ा है कि आज शरद का वर्णन भी आ गया, शरदम वर्णन, वर्षा काल का वर्णन किया और वर्षा कालीन भगवत लीला का वर्णन किया। अब शरद काल का वर्णन करके फिर शरद कालीन लीला का वर्णन करेंगे, तो लीला का वर्णन तो आज नहीं आ पाएगा, लेकिन शरद काल का वर्णन सुनिए। एवं इस प्रकार वर्षा काल में विहार करते करते तस्मिन ब्रजे राम केशवयो हो, राम केशव निवसत, उस ब्रज में राम कृष्ण के, मतलब श्री बलराम और कृष्ण के रहते रहते शरद समूह शरद काल आया। शरद आश्विन और कार्तिक को कहते हैं, यह लगभग प्रारंभ होता है सितंबर में, सितंबर अक्टूबर और आधा नवंबर तक, आधा सितंबर से आधा नवंबर रहता है शरद का, बहुत सुहावना मौसम है। तो उस समय शरद की वर्णन कर रहे हैं, शरद कैसा है, तो व्यभ्रा अभ्र माने बादल, बादल हट जाते हैं आकाश, आकाश साफ हो जाता है, धूली नहीं रहती है, बिजली नहीं चमकती है, स्वच्छ हो जाता है, स्वच्छ अंबु अपरिशाला, और अंबु सरोवरों के जल, नदियों के जल सब स्वच्छ हो जाते हैं, और अपरुष अनिला, अनिल माने हवा, वायु अब कठोर नहीं रह जाती है, बहुत वायु की गति धीमे हो जाती है, और वायु थोड़ा ठंडा पना लिए बहने लगता है, मतलब है समशीतोष्ण वायु बहती है, और सुगंधित फूलों की गंध लेकर के, और मंद परुष नहीं रहते। हवा जब जोर से चलती है तो इसको परुष अनिल कहते हैं, हवा का जोर से चलना पसंद नहीं पड़ता, तो वर्षा काल में हवा जोर से चलती है, कभी कभी हवा के झोंके आते हैं बहुत तरह के, लेकिन शरद काल के आने पर हवा मंद गति हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। और एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं इसकी कथा, आज वहां पर हम लोग सुने, वह श्लोक आ रहा है कि शरद काल के आते ही नदियों और सरोवरों के समस्त जल स्वच्छ हो जाते हैं बिना प्रयास के। वर्षा काल में पानी मटमैला होता है, मिट्टी का अंश मिला होता है, लाल रंग का दिखाई देता है, लेकिन शरद काल के आते ही वो साफ हो जाता है। प्रकृति जयो, शरद काल में नीरज की बहुत उत्पत्ति होती है, नीरज कमल को कहते हैं, नीर माने पानी, जल माने जन्म लेने वाला, जो पानी में जन्म लेता है उसको नीरज कहते हैं। तो शरद काल में नीरज बहुत उत्पन्न होते हैं, गांव में जिन लोगों ने देखा होगा तो शरद काल के आने पर सरोवर में निश्चित कोई खिल जाती है, कमल की एक छोटी जाती है, छोटी छोटी कमलनी कहते हैं, कुमुदिनी, सब जगह खिल जाती है। तो कमल है कि उत्पत्ति शरद काल में होती है, और उस शरद से निराली प्रकृति जयो, जितने भी जल हैं वे सब प्रकृति अपने स्वभाव में हो जाते हैं, उनकी गंदगी चली जाती है। प्रकृति का अर्थ है अपना स्वभाव, जल का स्वभाव, स्वाभाविक स्वभाव है स्वच्छ रहना, लेकिन उसमें कुछ आगंतुक वस्तुएं मिल जाती हैं इसलिए जल गंदा हो जाता है। भूमि परत भा ढाबर पानी, ऊपर से जल गिरता है तो जल वास्तव में अपने शुद्ध स्वरूप में रहता है, लेकिन भूमि का स्पर्श होते ही भूमि उसमें मिल जाती है, जैसी भूमि होती है उस रंग का पानी हो जाता है, मटमैला हो जाता है, और पूरा बरसात पानी इसी तरह से रहता है नदियों का, नदियों का पानी बहता जाता है, बहता जाता है, फिर भी गंदा पानी रहता है, सरोवरों का पानी हो जाता है, और शरद काल के आते ही सब साफ, कोई प्रयास नहीं करना होता है। इसी प्रकार से जिनका संसार में रम जाता है, संसारिक भोगों को पसंद करने लगता है, चित्त गंदा हो जाता है, जो भ्रष्ट हो जाते हैं, भक्ति योग नहीं करते हैं और चित्त संसार में लग जाता है, लेकिन पुनः यदि वे भक्ति योग का सेवन करें, पुनः योग निसेवया, तो वे पुनः कृष्ण कांसस हो जाते हैं, हर एक बार बरसात में पानी गंदा होता है और शरद काल में साफ हो जाता है, हर एक बार प्रत्येक साल दृष्ट देखा जाता है। तो इससे उत्साह लेना चाहिए, इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। भक्ति योग करने से, श्रवण कीर्तन आदि करने से चित्त भगवान में लग जाता है। तो ये जो शरद काल है उसकी उपमा भक्ति योग से दी जाती है। और यहां पर व्याख्या में लिखी गई है यह बात कि जो ज्ञान योग है, जैसे भगवान का ध्यान करना केवल, तो उससे होता क्या है कि वो केवल जीव शुद्ध होता है। जैसे किसी एक घड़ा का पानी शुद्ध किया जाए, एक घड़ा का पानी शुद्ध होने से तो नदी का पानी शुद्ध होगा नहीं, है ना। मान लीजिए किसी तरह से घड़ा का पानी शुद्ध हो गया, लेकिन ज्ञान योग में घड़ा का पानी कैसे शुद्ध होता है, मान लीजिए घड़ा का पानी मतलब चेतना, हमारी चेतना, तो कुछ काल के लिए एकांतवास करके ध्यान करके मन अस्थिर हो जाता है, लेकिन फिर विषयों का संयोग पाते ही गंदा हो जाता है। जैसे घड़ा में पानी रखिए तो कुछ देर छोड़ दीजिए तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और ऊपर स्वच्छ पानी हो जाता है, लेकिन थोड़ा हिला दीजिए तो फिर पानी गंदा। शरद काल में जो पानी की शुद्धि होती है वो कितना भी हिलाइए कुछ भी कीजिए गंदा होने वाला नहीं है। शरद काल इस तरह से समाप्त है। इसी प्रकार से भक्ति योग करने से जिनका चित्त स्वच्छ होता है तो किसी भी तरह से फिर गंदा नहीं होता, और कदाचित हुआ भी तो पुनर्योग निश्चय होया फिर भक्ति करने से शुद्ध हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस तरह सुखदेव गोस्वामी एक संदेश दे रहे हैं कि सबको भक्ति योग में लगाना चाहिए। श्री कृष्ण की भक्ति करने पर चित्त शुद्ध हो जाता है। पुनः योग निषेवया का अर्थ है कि हो सकता है कि चित्त बारंबार गंदा हो, लेकिन बारंबार भक्ति करने से शुद्ध हो जाएगा। अच्छा, अब कहते हैं शरद काल के आने पर हुआ पंक मपा मलम शरद जहारा संग्राम कृष्ण भक्तिर जथा शुभम। शरद काल के आने पर व्योमन अभ्रम जहार, शरद काल आकाश के बादल को हटा देता है, आकाश को साफ कर देता है। लगता है वर्षा काल में जो बादल हैं वो आकाश की गंदगी जैसा लगते हैं, है ना, तो शरद काल आते ही उनको साफ कर देता है। और आकाश का जो चंद्रमा है या तारे हैं वो रात में सब दिखाई पड़ने लगते हैं, सूरज खूब अच्छी तरह। तो शरद आते ही व्योमन अभ्रम आकाश के बादल को खत्म कर देता है। इसके साथ ही साथ भूत साबल्यम जहारा, दूसरा काम क्या करता है शरद, भूत साबल्य को समाप्त कर देता है। भूत का अर्थ है जीव और साबल्य का अर्थ होता है संकर्ष। वर्षा काल में कई जीव एक जगह जुट जाते हैं, उनको साबल्य कहते हैं। इसको बहुत भीड़ भाड़, मतलब आप देखे हैं वर्षा काल में, हम तो कई बार इस बात को देखे हैं कि इतनी वर्षा होती है पानी भर जाता है कि कभी कभी सांप और चूहा को भी एक साथ रहना पड़ता है मेड़ में या घर में भाग आते हैं। वर्षा काल में सर्प आदि बाहर खेतों से घर में भाग आते हैं, या चींटियां, चीटा चींटी, ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब इधर उधर से भाग कर एक जगह हो जाते हैं। और मनुष्यों में भी अब घूमना फिरना छोड़ करके एक घर में धक्का करते हैं, बहुत लोग रहने लगते हैं। गर्मी के दिन में तो कहीं भी सो लेते हैं, इधर उधर घूमते हैं, लेकिन अब वर्षा काल में अब बाहर सो नहीं सकते हैं, एक जगह जुटते हैं। तो सब प्रकार के जीव की संकीर्णता होती है, जुट जाते हैं एक जगह, और शरद काल आता है तो फिर वे लोग अब इधर उधर चले जाते हैं। तो शरद काल आकर के दूसरा काम करता है कि जीवों के संकर्ज को खत्म करता है, एक जगह नहीं रहते हैं, बिखरा देता है। अच्छा, तीसरा काम क्या करता है, भूअ पंकम जहारा, जहारा माने खत्म कर देता है, भूअ पृथ्वी के पंख को दूर कर देता है। पृथ्वी पर पंख हो जाने के कारण पृथ्वी अच्छी नहीं लगती है, जहां जाइए वहां पैर धसेगा, इधर कीचड़ उधर कीचड़ इधर कीचड़, बरसात में
पृथ्वी गीली हो जाती है, लेकिन शरद काल आते ही वो पंख समाप्त हो जाता है। पंख कहीं जाता नहीं है, लेकिन उसका गीलापना दूर हो जाता है शरद काल के आने पर। तो इस तरह पृथ्वी के पंख को दूर करता है अपाम मलम, अपाम माने जल, और जल की गंदगी को दूर कर देता है। चार काम करता है शरद, क्या क्या चार? आकाश के गंदगी बादल को दूर करता है, और जीवों की संकीर्णता को दूर करता है, पृथ्वी के पंख को और जल के मल को दूर करता है। वैसे ही जैसे कृष्ण भक्ति, कृष्ण में की गई भक्ति चारों आश्रम के कष्ट को दूर कर देती है। कृष्ण भक्ति जथा शुभम, कृष्ण की भक्ति आश्रमिणा अशुभम जहा। यदि कृष्ण की भक्ति कोई करता है तो चारों आश्रम में जो दुख है जीव को, अशुभ है, उसको भक्ति दूर कर देती है। तो चार आश्रम में दुख क्या है? अब बैठाना होगा आकाश के साथ, पृथ्वी के साथ, जीवों के साथ, पानी के साथ। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, पर समय बहुत कम है। देखिए पहले ब्रह्मचर्य आश्रम से चालू करेंगे। ब्रह्मचर्य आश्रम को आकाश कहा गया है, तो आकाश के बादल को दूर कर देता है शरद। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में भी कुछ कष्ट है। कष्ट क्या है? गुरु की आज्ञा मानो, पानी भर लाओ, लकड़ी लाओ, ये करो वो करो, बैठ करके पढ़ो, घंटों घंटा वेद रखना पड़ता है, कई कष्ट है उसमें भी। वास्तव में पढ़ाई लिखाई भी एक कष्ट है, लड़के पढ़ना चाहते नहीं है, जबरदस्ती उनको पढ़ाना पड़ता है कि नहीं? यदि उनको छोड़ दिए जाए उनकी इच्छा के अनुसार तो कोई नहीं पढ़ेगा। तो एक कष्ट है ब्रह्मचर्य आश्रम का, बहुत तप करना पड़ता है, गुरु के लिए सेवा करनी, पानी ढोकर के लाना, कहाँ कहाँ झरना से इधर उधर से। लेकिन जब कृष्ण की भक्ति वो करने लगता है ब्रह्मचारी, तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं रहता है कि वो गुरुकुल के नियमों का पालन करे, वह उससे ऊपर उठ जाता है। यदि भगवान की भक्ति करने लगता है तो अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है कि वह इस तरह से आचार्य की सेवा करे और लावे, उनके लिए भोजन बनावे, पानी लावे, ये करे वो करे। ये बात यहां पर टीका में कही गई, ये अशुभ है उस आश्रम का, इतना तप नहीं करना पड़ता। भगवान की भक्ति सुख स्वरूप है, आनंद के साथ अब वो गाता है, जपता है, भगवान की बातें सुनता है। अब उस आश्रम के ब्रह्मचर्य आश्रम के जो कष्ट है उससे मुक्त हो जाता है। गृहस्थ आश्रम का क्या कष्ट है? गृहस्थ आश्रम का कष्ट है बहुत बहुत जीवों का पालन पोषण करना है, बहुत तरह की सोचना है, सबके लिए सोचना पड़ता है, इसका खर्चा कैसे चलेगा, इसको कैसे मेंटेन करेंगे, आगे का भी चाहिए, इमरजेंसी के लिए चाहिए। आज हम सुन रहे थे डॉक्टर साहब के द्वारा कि यहाँ इस देश में डॉक्टरों के ऊपर भी बहुत विपत्ति रहती है। कोई भी कुछ सो कर सकता है, सो कर सकता है। कोई उसके घर पर पोस्टमैन आया चिट्ठी देने के लिए, पत्र देने के लिए, और उसका पैर यदि कहीं स्लिप कर गया, गिर गया, तो वो किस करेगा? ऐसा क्यों घर रखा है? अब बताइए, हमारे यहाँ तो ऐसे वो गिर जाए तो उसको मारा जाएगा, तुम क्यों गिर गए, तुमको आंख नहीं है, क्यों गिर गए? कई तरह का झंझट है घर की हस्ती में, बहुत बहुत दुख है, खास करके भूत साबल्य। गृहस्थ आश्रम क्या है? कई प्रकार के लोगों का निवास स्थान है। पता नहीं, मान लीजिए हमारा पुत्र बना तो पता नहीं कि पहले कहाँ का वो था, किस प्रकृति का था, वो आकर के हमारा बेटा हो गया, कोई हमारी पत्नी हो गई, कोई कुछ हो गया। परिवार में बहुत आदमी रहते हैं और हरेक का दिमाग अलग अलग रहता है, सबकी अलग अलग आकांक्षा होती है, वासना होती है, और सबको लेकर के चलना होता है। सबको लेकर के चलना होता है, तो इसको भूत सावल्यन कहते हैं, यही कष्ट है। लेकिन जब गृहस्थ भगवान की भक्ति करने लगता है तो उसका यह कष्ट दूर हो जाता है, उसे अब चिंता नहीं होती है वास्तव में, और घर के लोग भी धीरे धीरे सुधर जाते हैं, उनकी कई वासनाएं नहीं रह जाती हैं। इच्छाएं बहुत होने से घर को चलाना कठिन होता है। संख्या कितना भी रहे, अगर इच्छा सबकी एक है तो कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसे हम लोग भारतवर्ष में देखते हैं, ट्रेन से लोग चलते हैं, अगर सब लोग ड्राइवर के अनुसार चलते हैं तो हजारों आदमी ट्रेन से जा रहे हैं, लेकिन एक आदमी भी विपरीत चलना चाहता है तो चिन्ह कर देता है, रुक जाती है गाड़ी, है कि नहीं? एक आदमी वो जंजीर खींच दे बस गाड़ी रुक जाती है। एक आदमी भी विपरीत बुद्धि वाला हो तो चलाना कठिन हो जाता है, है कि नहीं? तो एक घर गृहस्थी में ऐसा है ही कि कई कई विचार होते हैं, इसलिए भगवान की भक्ति चालू करनी चाहिए, तब जाकर घर गृहस्थी सुखद होगा, नहीं तो ये केवल दुख धंधा है। तो कृष्ण भक्ति यथा अशुभम जहर, कृष्ण की भक्ति इस संकट को दूर करती है। कई तरह से लोग, समाज शास्त्री लोग, बहुत काल से विचार करते आ रहे हैं कि समाज कैसे सुखी होगा, परिवार कैसे सुखी होगा, ये कैसे सुखी होगा, वो कैसे सुखी होगा, है कि नहीं? हर एक साल रिसोल्यूशन बनाते हैं पार्लियामेंट में, इधर उधर ऐसे सुखी करो, ये सुखी करो, और समाज दुखी होता जा रहा है। तो यहां समाज को सुखी करने के लिए, परिवार को सुखी करने के लिए बात बताई जा रही है। ये परिवार के अनुसार देश को भी सोच लेना चाहिए, देश भी एक परिवार है, राज्य भी परिवार है। तो कृष्ण की भक्ति ही सब प्रकार के असुख को, दुख को दूर करती है। इसलिए सीखना चाहिए, परिवार में भक्ति जरूर होनी चाहिए, तब असुख दूर हो जाएगा, दुख दूर हो जाएगा। यह गृहस्थ का, गृहस्थ आश्रम का दुख। भुव पंकम, पृथ्वी के पंख को दूर कर देता है शरद, मतलब जमीन को कड़ा कर देता है। ये वानप्रस्थ आश्रम का दुख है। वानप्रस्थ आश्रम में तप करना पड़ता है और शरीर पर मैल जम जाती है, नाखून बढ़ जाते हैं, केश नहीं काटना होता है, कई प्रकार का दुख है वास्तव में उस आश्रम में। लेकिन जब भगवान की भक्ति होती है तब जीव तपस्या का आग्रह नहीं करता है, वो भगवान की भक्ति में आनंद से रहता है और समय पर खाता है, पीता है, प्रसाद खाता है, और बहुत कठिन तप उसे नहीं करना पड़ता है ना। हम लोग तो देखे हैं जो गांव में ऐसा नियम रखते हैं कि हम नहा करके ही खाएंगे, लेकिन भक्त नहीं है तो उनको बहुत लेट भोजन मिलता है, और जो भक्त हैं वो तो सवेरे भगवान को भोग लगाते हैं, नहा लिए हैं, पा लेते हैं, खा लेते हैं आराम से। ये तो दिन दिन भर बिना खाए आदमी रह जाता है। कई प्रकार का कष्ट वानप्रस्थ आश्रम में है। तो वानप्रस्थ आश्रम का दुख भी भक्ति दूर कर देती है। और अपान मलम, जल का मल, जल की गंदगी दूर करता, ये है संन्यास आश्रम का दुख। संन्यास आश्रम में भी अकेले रहना होता है। संन्यास धर्म में वर्णन किया गया है महाभारत में कि सवेरे जब नींद खुले सन्यासी की तो खड़ा जिस ओर हो रहा है उधर ही चल दे, जिधर फेस हो, और किसी से बताना नहीं चाहिए कि कहां जा रहा है, प्रतिदिन किसी को कोई पता न लगे। और अब तो फोन नंबर है, सब जानते हैं कि वो सन्यासी कहाँ है, क्या कर रहा है, कहाँ गया। सन्यास जीवन का मतलब ही होता है कि परिवार के लोग न जाने को कहाँ है, और अलक्षित देश होता है। कोई प्रयोजन नहीं होता है कि यहाँ जा रहे हैं तो लिख लिए हैं कि आगे ये करना है, कुछ नहीं, वो चला जाता है, इसको सन्यास कहते हैं। सन्यास आश्रम के नियम, और अकेले घूमे, भगवान में चित्त को रखे, जप करे, ये करे वो करे, कोई प्रवृत्ति का कार्य ना करे संन्यास। महाभारत में कई चैप्टर में संन्यास धर्म का वर्णन किया गया, लेकिन ऐसा संन्यास अब इस युग में कहां नहीं हो सकता है। तो संन्यास आश्रम में भी अकेले रहना, कई कई प्रकार का कष्ट है ये है, लेकिन जब भगवान की भक्ति करने लगता है संन्यासी तो इस प्रकार के कष्ट आदि का सामना उसे नहीं करना पड़ता। नहीं तो सन्यासी के लिए वर्णन है कि अगर उसको बुखार आ जाए तो दवा मांगने ना जाए किसी से, कंबल हो तो ओढ़े, नहीं तो सहे ऐसे।
तो कृष्ण की भक्ति में इस प्रकार के एकाग्रता का तप का कोई मान इसकी जरूरत नहीं रहती। तो कृष्ण भक्ति चारों आश्रम के दुख को दूर करती है, जैसे शरद ऋतु आकाश से बादलों को खत्म करता है, जीव संकर्ज को खत्म करता है, पृथ्वी के पंख को खत्म करता है और जल के गंदगी को खत्म करता है। तो हम लोग भी हर एक साल देखते हैं इन बातों को, इन सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तो पुनः बादलों का वर्णन कर रहे हैं, वर्षा काल में बादलों का वर्णन हुआ कि वायु की प्रेरणा से बादल जल बरसाते हैं, लेकिन शरद काल आने पर बादल अब जल नहीं बरसाते हैं, जो कुछ था उनके पास वो तो सब दे चुके हैं, जो कुछ रहता है वो दे चुके हैं। तो देने के बाद भी बहुत अच्छा लगते हैं, शुभ वर्ण के लगते हैं, और जब तक नहीं देते हैं तब तक काला काला लगते हैं वर्षा काल में। संग्रह करके धन रखते हैं तो काला काला लगते हैं, वर्षा काल में बादल काले रहते हैं और शरद काल के आने पर स्वच्छ हो जाते हैं। सर्वस्वम जलदा हित्वा विरेजु शुभ्र वर्चस्व, अपना सर्वस्व, स्व का अर्थ होता है धन, अपना सारा धन हित्वा दे देने के बाद जलदा जल अग्नेर समूह शुभ्र वर्चस्व, अब उजला लगने लगते हैं, चमकने लगते हैं और विरेजु बहुत सुंदर लगते हैं। सबका यह अनुभव है, शरद काल में बादल बहुत अच्छा लगते हैं, शुभ वर्ण के हो जाते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, अब कालापना नहीं रह जाता है उनमें, क्योंकि सारा दान कर दिए। ठीक वैसे ही वे सुंदर लगते हैं, जैसे जथा त्यक्तई सड़ा शांता मुनयो मुक्त किल विषय, शांत गुण आदि से युक्त राग आदि से रहित जिसका चित्त है वह वे मुनि जन जैसा अच्छा लगते हैं, जो उन्हें कोई कामना नहीं होती, कोई वासना नहीं होती है, तो मुनि जन जैसा अच्छा लगते हैं। ठीक उसी तरह बादल अच्छा लग रहा है, त्यक्तैषणा है इसमें लिखा गया, मुक्त किल विषा त्यक्तैषणा है, किल विषा, किल विष कहते हैं वासनाओं को, जिनके भीतर वासना है वो किलबिष है, अपराध है, कोई ना कोई गलती करते ही रहेंगे। और ऐसा का अर्थ होता है, इसका भी अर्थ वासना है, ऐसा तीन प्रकार की वासना बताई गई है, ऐसा धनायसना, लोकायसना और पुत्रायसना, ऐसा है। और कभी कभी तो पुत्रायष्णा के बदले दारायष्णा कहते हैं शास्त्र में। प्रत्येक व्यक्ति में ये कामना होती है, ऐसा ऐसा का अर्थ है उत्कट कामना, उत्कट वासना, क्या धनायष्णा, कि हमारे पास धन आ जाए, हमारे पास काफी धन हो, इसको ऐसा कहते हैं। धन की आवश्यकता अवश्य है, लेकिन मनुष्य जितना धन चाहता है उतने की आवश्यकता नहीं है। चाहने के लिए तो एक व्यक्ति को सारी दुनिया दे दी जाए तभी कहेगा ठीक हुआ, अच्छा और कमी रह गई, यही कहेगा है कि नहीं। भगवान ने इस दुनिया में सारा धन बांट दिया है, थोड़ा 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 बांट दिया है, और जो भी व्यक्ति आवश्यकता से ज्यादा संग्रह करता है इसका मतलब कि वो दुख भोगेगा, उसे दुख भोगना है। ऐसा नहीं होनी चाहिए। और दारासना या पुत्रासना, मनुष्य की कामना होती है कि हमें बहुत सी स्त्रियां मिले या स्त्री मिले, हमें पुत्र हो, सामान्य इच्छा है सबकी, सब में इच्छा होती है, लेकिन क्यों पुत्र हो ये भी आदमी विचार नहीं करता, भगवान में मति नहीं लगी हुई है। जनरल सबकी इच्छा है कि हमको बेटा हो जाए, हमारा विवाह हो जाए, हमको स्त्री मिले और हमको धन मिले और दुनिया में मान मिले, लोकेशन है, दुनिया में हमको बड़ा पद मिले, मैं मिनिस्टर हो जाऊं, ये हो जाऊं, वो हो जाऊं, ऐसे हो जाऊं, सबकी यही इच्छा है कि नहीं। इसके लिए वोट लड़ते हैं, कंपटीशन में बैठते हैं, रोज रोज कंपटीशन है। तो कुछ मुनिजन होते हैं विचारवान जो त्यक्त ऐसा ऐसा से हीन होते हैं, उनको कोई इच्छा नहीं होती है, भगवान के भक्त होते हैं तो बहुत अच्छा लगते हैं। बादल भी जब तक संग्रह रखते हैं तब तक अच्छा नहीं लगते हैं, सर्वस्व जो दान कर देते हैं तब बहुत अच्छा लगता है। आज तक एक श्लोक में भी आप नहीं दिखा सकते हैं शास्त्र में कि भोगने वाले की प्रशंसा की गई हो, है कि नहीं? भोगने वाले की प्रशंसा नहीं की गई है, देने वाले की प्रशंसा सब जगह है। जैसे बलि महाराज ने सारा भूमंडल दे दिया, तीनों लोक दे दिया भगवान को, तो उनकी बहुत प्रशंसा है। लेकिन भोगने वाले कई कई लोग भोगे मर गए, उनका नामो निशान मिट गया, सब कुछ खत्म हुआ, कीर्ति भी नहीं रह गई, राज तो गया ही, देह भी गया और अब कीर्ति छाई। कोई कितना भोगेगा और भोगने से लाभ क्या है? मनुष्य को देने की आदत डालनी चाहिए, ये स्वभाव होना चाहिए, तब मनुष्य सुंदर लगता है, तब उसकी शुद्धि होती है। एक श्लोक में भागवत के दशम स्कंध के एक श्लोक में बताया गया है कि कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कार तपसे जया शुद्धंति दान संतुष्टया द्रव्याण आत्मविद्यया। काल से भूमि शुद्ध हो जाती है, समय बीतता है तो भूमि अपने आप शुद्ध हो जाती है। जैसे वर्षा काल में भूमि गंदा हो गई, नहीं बैठ सकते हैं आप, कीचड़ हो जाता है, लेकिन कुछ काल बीतने के बाद अपने आप बैठने लायक हो जाती है। काल के बीतने, समय के बीतने से भूमि शुद्ध हो जाती है, काल शुद्ध कर देता है। स्नान शौचाभ्याम, और स्नान करने से शरीर शुद्ध हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको भगवान की पूजा करनी हो, आरती करनी हो, लेकिन इस तरह से आप नहीं छू सकते हैं, अगर स्नान कर लेते हैं तो छूने के योग्य हो जाते हैं, है ना? स्नान से शरीर की शुद्धि हो जाती है। और शौचाभ्याम, शौच से, प्रक्षालन से काष्ट आदि बर्तन की शुद्धि हो जाती है। जूठा बर्तन है या है उसको धो करके मान करके रख दे तो शुद्ध हो जाता। काले स्नान शौचाभ्याम संस्कार है, और संस्कार करने से जन्म शुद्ध होता है। जैसे गर्भाधान संस्कार होता है, या जन्म लेने के बाद कुछ वेद के मंत्र पढ़े जाते हैं, कुछ क्रिया की जाती है, तो गर्भ की शुद्धि होती है और जन्म की शुद्धि होती है, उसको संस्कार कहते हैं। संस्कार, संस्कार से गर्भ आदि की शुद्धि होती है। तपसा इंद्रियादि, तप करने से इंद्रियों की शुद्धि होती है, हमारे आंख कान नाक कान या मन की शुद्धि तप करने से होती है, भोग से नहीं। भोगों से इंद्रियां और अशुद्ध होती जाती है, तो तप से इनको शुद्ध करना चाहिए। तप का अर्थ है कि इनको सांसारिक वस्तुओं में न लगाकर भगवान में लगाना चाहिए, इससे शुद्धि होती है। हम समझते हैं कि जो लोग एकादशी व्रत करते हैं, जरूर द्वादशी के दिन वो अनुभव करते हैं कि मैं शुद्ध हूं और दिन की अपेक्षा, है कि नहीं? दूसरा आदमी जो एकादशी को भी खूब खाया है वो नहीं अनुभव करेगा कि मैं शुद्ध हूं, है? हमारे तो पर्सनल अनुभव कि द्वादशी के दिन ऐसा लगता है कि जैसे और दिन की अपेक्षा मैं शुद्ध हो गया है, तप से शुद्धि होती है। और प्रत्येक मनुष्य को अपने को शुद्ध रखना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए, तो तपस्या से इंद्रियों की शुद्धि होती है। जैसे आप सत्य भाषण कीजिए और सत्य न बोलिए तो जिह्वा की शुद्धि है, और जिह्वा की सबसे बड़ी शुद्धि है कि इसको भगवान के नाम में लगाया जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस तरह से जिह्वा शुद्ध होती है भगवान का नाम गुण आदि बोलने से, कान सुनने से शुद्ध होता है, और हाथ भगवान की सेवा से या दान देने से शुद्ध होता है। ऐसे केवल साबुन अगुण लगा लेने से साफ नहीं होगा, ये तो बाहरी शुद्धि है, लेकिन हाथ असली शुद्ध होगा ये भगवान की सेवा करने से, या दिनहीन का उपकार करने से, दान करने से शुद्ध होता है। एक श्लोक में लिखा गया है कि
दाने न पाणी न तु कंकड़े न, कंगना से चूड़ी से हाथ शोभा नहीं देता है, ये देता है दान करने से हाथ शोभित होता है। दान से हाथ की शोभा बढ़ती है भगवान की सेवा करने से। तो इसी तरह से तपसा इज्जया और पूजा करने से ब्राह्मण की शुद्धि होती है। जो ब्राह्मण पूजा आदि में रहता है तो वो शुद्ध रहता है, नहीं तो अशुद्ध माना गया। शुद्धियंत इस तरह से दान ही, और दान से धन की शुद्धि होती है। आने में जो झूठ साच बोले हैं, कई तरह के फाउल कर्म किए जाते हैं, उस धन की अशुद्धि है। धन कमाने में वास्तव में पहले तो इतनी अशुद्धि नहीं होती थी, लेकिन अब तो बहुत बहुत अशुद्धि उसके साथ चिपटी रहती। पता नहीं कैसे कैसे, हमें तो इसका अनुभव नहीं है क्योंकि मैं कभी कोई बिजनेस नहीं किया हूं। लेकिन जो कुछ भी हो, आज के युग में सहज समझा जा सकता है कि धन कमाने में जरूर कुछ गलत काम करना पड़ता है। तो ये जो गलत काम है वो है उस धन की अशुद्धि। तो धन की अशुद्धि को दूर करने के लिए दान है। वो दान दे करके उस धन को खाएंगे तब तो ठीक से जिलाएगा, नहीं तो जहर जैसा मार देगा वो, बिना दान दिए खाएंगे तो। परंतु वह भी एक सीमा के अंदर अशुद्धि होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गाय काट काट करके और दान दिया करें बेच बेच करके, उस वो शुद्धि नहीं होती है। शुद्धि का मतलब जैसे मान लीजिए आप स्नान करके आए, गंदा है स्नान किए शुद्ध हो गए, लेकिन हमेशा अपने शरीर में मल लगा लगा करके और नहाया करें, ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। वैसे क्या वो जल शुद्ध करेगा। तो कुछ ऐसे हैं कि नॉर्मल कंडीशन है, स्वाभाविक कुछ पाप हो जाते हैं किसी से भी, और गृहस्थों से छोड़ दीजिए सन्यासियों से भी पाप होते हैं, पाप होते हैं कुछ काम करने में। तो उसके लिए शुद्धि का उपाय बताया गया है। तो गृहस्थों के लिए धन की शुद्धि का उपाय है दान। दान का अर्थ देना, अब कहां दे कैसे दे इन सब का भी बहुत विचार किया गया है, तो वो शुद्ध हो जाता है। तो धन की शुद्धि दान से होती है, और मन की शुद्धि संतोष से होती है। ये सुखदेव गोस्वामी का ही श्लोक है, संतुष्टिया मना। संतुष्टि का अर्थ है कि भगवान की कृपा से कुछ काम करने के बाद जो कुछ मिला उतने में ही बस पूरा अलम बुद्धि करे, सेटिस्फाइड रहे, इसको संतोष का। असंतोष बहुत भारी दुर्गुण है मनुष्य का, और सबसे बड़ा दोष है लोभ। भागवत में लिखा गया है कि क्रोध की भी सीमा होती है, काम की भी सीमा होती है, लेकिन लोभ की सीमा नहीं होती। तो मान लीजिए किसी के अंदर बहुत भारी काम है, भोजन की कामना है, खूब खाया पिया, लेकिन खाने के बाद पेट भरने के बाद काम शांत हो जाता है, या स्त्री संग आदि की कामना शांत हो जाती है। देखा गया है ये काम शांत हो जाता है, क्रोध भी शांत हो जाता है। किसी पर क्रोध हुआ है उसको मार दीजिए, बाद में मन पछताने लगता है, ओ ये मार दिया है, कि वो शांत हो जाता है। लेकिन लोभ ऐसा दोष है कि जितवा भुक्तवा दिशो दशा, दसो दिशा को जीत कर भोग कर भी लोभ मानता नहीं, कहता अभी कमी है। ये कभी पूरा नहीं होता है। तो मन को शुद्ध करने का उपाय है संतोष, जितना मिला उतने में संतोष करे। ये समझना चाहिए कि भगवान हमारे कर्मानुसार हमको ये दिए है, इसमें हमें संतोष करना है। और अवसर पाकर मैं यहां एक बात कह रहा हूं, नीति श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य को तीन विषय में बिल्कुल संतोष करना चाहिए। वो है कि संतोषो त्रिषु कर्तव्यो, स्वदारे भोजने धने। तीन में बिल्कुल संतोष करना चाहिए। वो है पहला स्वदारे, अपनी पत्नी में सदा संतुष्ट रहना चाहिए। मनुष्य को जानना चाहिए, शास्त्र लिखता है कि स्त्री की प्राप्ति भगवान के विधान से होती है। महाराज युधिष्ठिर से जक्ष ने पूछा कि मनुष्य का दैव के द्वारा बनाया हुआ मित्र कौन है, ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि स्त्री जो है, पत्नी जो है, वो भगवान के द्वारा बनाया हुआ मित्र है मनुष्य का, भगवान देते हैं। तो अनेक स्त्रियां हैं इस जगत में, किसी पुरुष के पास कौन स्त्री आएगी पहले से पता नहीं होता है ना, कौन आएगी कुछ पता नहीं होता है, लेकिन जो आएगी वो ईश्वर के द्वारा लिखा हुआ समझना चाहिए। हम लोगों के यहाँ विवाह के पहले लोग कहते भी जहां भारी होगी वहां होगा, जहां लिखा होगा वहां होगा, है कि नहीं, ये सब लोग जानते हैं। तो जो स्त्री अपने भाग्य के अनुसार मिले पत्नी के रूप में तो उसी से संतुष्ट रहना चाहिए, यही समझना चाहिए कि यही सबसे सुंदरी है, गुणवती है हमारे लिए, और स्त्रियों की कोई कीमत नहीं है, संतुष्ट रहना चाहिए। और एक स्त्री में यदि कोई पुरुष संतुष्ट रह गया तो वास्तव में वह ब्रह्मचारी माना गया है, वह महात्मा है, शास्त्र में इसकी बहुत प्रशंसा है। तो संतोष करना चाहिए। अब संसार में अनेक स्त्रियां हैं, अनेक गुणवती है, सुंदरी है, लेकिन उस पुरुष के लिए सब काल के समान है, जहर के समान है। और शास्त्र कहता है कि उम्र को घटाने में सबसे बड़ा पाप कौन है, सबसे बड़ा कारण कौन है, तो परदाराधिमर्शन, दूसरे के स्त्री का स्पर्श करना, यही है मनुष्य की आयु को कम करने में सबसे बड़ा कारण। अनायुष्यम कहा गया, स्कंद पुराण का वाक्य है। इसलिए इस दोष से मनुष्य को बचना चाहिए। धर्म के अनुसार अपनी पत्नी के साथ रहना है, भगवान का स्वरूप है। गीता में भगवान कहते हैं धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर सभा। हे भरत श्रेष्ठ, जीवन में मनुष्यों में जो धर्म के अविरुद्ध काम है, मतलब अनुकूल काम वासना है, वो मैं हूं। अब बताए, जिस काम को भगवान अपना स्वरूप कह रहे हैं लेकिन वो धर्म के अविरुद्ध होना चाहिए, विरुद्ध नहीं होना चाहिए, तो वह काम मैं हूं। इसकी बहुत प्रशंसा की गई है वास्तव में शास्त्रों में। मेरे पास समय नहीं है कि मैं बहुत बहुत बात कह सकूं, लेकिन इस सिद्धांत की बहुत प्रशंसा की गई है। रामायण में लिखा गया है कि और हो सकता है कोई भी पापी शुभ गति पा जाए, लेकिन परतीय गामी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाला पुरुष कभी शुभ गति नहीं पा सकता है, उसे घोर नरकों में गिरना पड़ता है। और किस नरक में, भागवत में लिखा गया तप्त सुरमी नरक में। सुरमी का अर्थ होता है मूर्ति। एक नरक लोक है जहां लोहे की मूर्तियां हैं, स्त्री मूर्ति पुरुष मूर्ति, और उनको लाल किया जाता है, हमेशा लाल रहती हैं, तप्त रहती हैं वो मूर्तियां, और पुरुष जो गलती किया है उसको स्त्री मूर्ति से सटाया जाता है जबरदस्ती, और जलता है, मरता है इस तरह हजारों वर्षों तक। और यदि स्त्री ने गलती किया है तो पुरुष मूर्ति से सटाया जाता है, और पुरुष ने गलती किया है तो स्त्री से, इस तरह भोगना पड़ता है। तो स्त्री में संतोष करना चाहिए, और स्वदारे भोजने धने, और भोजन में संतोष करना चाहिए। भोजन जो भी हमारे सामने आया है वो हमारे कर्म का फल है, दूसरा कोई दे नहीं सकता है खाना, जो ललाट में लिखा गया है वही सामने उपस्थित हुआ है। और भोजन आ गया तो उस समय पत्नी पर क्रोध करने की जरूरत नहीं है, ये क्या बना दिया क्या बना दिया, जो तुम्हारे ललाट में लिखा गया था वही सामने उपस्थित है, ये क्या बना दिया। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि सामने जो भोजन आता है उसमें संतोष नहीं करते हैं, और जो नहीं सामने है उसकी याद करके तड़पते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला। जो नहीं मिला उसमें रस आ रहा है, और जो सामने आया है उसमें रस नहीं आ रहा है। कितने लोग ऐसे होते हैं, जो सामने भोजन आ गया है संतोष करके खाना चाहिए। हाँ जी, हाँ दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का, लिखा गया है वास्तव में। हो सकता है कि उस दाना पर वो भारत में जन्मा चावल हो और उसको लिखा गया है कि न्यू जर्सी में एक आदमी खाएगा, तो वो आ जाता है एक्सपोर्ट होकर, है कि नहीं, या यहाँ की वस्तु चली जाती है वहां। एक बार मैं यहां से गया प्लेन से तो हमारे बैग में पड़ा था नट्स, पड़ा रह गया, मैं देखा नहीं, तो 3-4 महीने के बाद वृंदावन में भक्तों को बांटा गया। तो देखो अमेरिका की चीज आकर 3-4 बरस, और अब तो सारी दुनिया में कहां की चटनी कहां जा रही है, कहां का अचार कहां जा रहा है। ये ऑस्ट्रेलियन फ्रूट्स है तो क्या है, ये ड्राई फ्रूट्स ये वो सब घूम रहे हैं। तो भगवान सेट किए हैं कि यह अन्न उड़ करके जाएगा इस आदमी के यहां मुख में, यहां जाएगा यहां जाएगा। तो संतोष करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई कुछ भी खाने को दे दिया बस संतोष करे, नहीं, आदमी का भोजन होना चाहिए। आदमी के भोजन की बात की जा रही है, पशु के और बाघ के भोजन की नहीं। राक्षस के भोजन की यहां चर्चा नहीं की जा रही है। एक बार मैं ये बात कह रहा था तो एक व्यक्ति प्रश्न किए, आप कहते हैं कि जो सामने आ जाए तो संतोष करे, सामने मांस आ जाए तो? कहा कि वो एकदम बैल हो, समझ नहीं रहे। यह भोजन, आदमी के भोजन की बात की जा रही है। इस विषय में एक बार मैं एक कथा सुना था एक साधु से। अब जैसे मान लीजिए मैं कहूं, मान लीजिए हमारा शिष्य है और मैं कहीं जा रहा हूं, तो कोई घर में अतिथि आए और मैं ये कह दूं कि बेटा उनको भोजन दे देना, तो हमारा शिष्य सोचे कि गुरु जी ने केवल भोजन कहा, ये नहीं कहा कि घास दो या मांस दो, केवल भोजन भर कहे हैं, क्या देना चाहिए अब बताइए। तो भोजन जो मैं करता हूं तुम करते हो, जो डेली बनता है भोजन का मतलब वो हुआ, और अतिथि को भोजन दे देना। इस विषय में महात्मा लोग कथा कहते हैं। एक बार एक सेठ के पास, धनी पुरुष के पास, दो विद्वान आए, तथा कथित विद्वान, तो दोनों को दो कमरा दिए रुकने के लिए, एक रुका था एक कमरे में, एक रुका था दूसरे कमरे में। तो सेठ आए मिलने के लिए, चर्चा करने लगे, उन्होंने कहा कि एक और आए हैं विद्वान आपके यहां। तो पूछे दूसरे विद्वान, कौन है वो, कहां के हैं? वो कहे यहां पे है वहां पे है। तो वो सुन करके क्या कहता, अरे वो तो बैल है, और विद्वान क्या है, तो बैल है। अच्छा, इससे मिल करके जब उस बैल के पास गए, उस आदमी के पास गए मिलने के लिए, स्वागत करने के लिए, तो उन्होंने चर्चा किया कि एक और विद्वान आए हैं काशी से चाहे जहां से भी। तो वो सुन करके कहा, अरे वो तो गधा है, वो क्या है? वो तो ही है। तो वो सेठ बहुत चतुर था, जब भोजन का समय आया तो उसने अपने सेवक से कह दिया कि एक को घास काट करके दे दे, चाहे दोनों को घास काट करके दे, एक गधा है एक बैल है। वही लोग अपना आइडेंटिटी बताए हैं, वो लोग खुद बताए हैं। तो खाने के समय उनको गधा का भोजन बैल का भोजन दे देना। तो यही हुआ, जब वो तो सेठ तो अपने ऑफिस में बैठे थे और सेवक ले गया उनके पास टोकरी में घास, भूसा घास ले गया, खल्ली आदि डाल कर उनके पास डाला। तो पहले वो समझे नहीं कि ये क्या बात है, और उसके पास जो गधा था उसके पास भी ले गए, मैंने जिसको कहा था गधा उसके पास भी ले गए रख दिया। तो लोग पहले समझे नहीं, भोजन का समय बीत गया, लंच का समय भी बीत गया सब। तो ये लोग बड़े क्रोधित हो रहे थे, बहुत क्रोधित हुए। अंत में वो लोग बुलाए कि सेठ को बुलाओ, कहाँ है, भोजन नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो सेठ आए, कहे कि वो लोग कहे भोजन क्यों नहीं भेजा, तो कहा भोजन तो आपका भेजा गया, बहुत जल्दी भेज दिया था, मैं 8 बजे के करीब ही भेज दिया था। क्या भेज दिया था? तो दोनों एक जगह थे उस समय, तो कहे कि आप बताए थे ना कि वो गधा है, और उन्होंने कहा था कि वो बैल है, तो आपका भोजन मैं भेज दिया था, आप लोग कहे थे ना। आप बताए थे कि वो गधा है और ये बैल है, तो मैं आपके आपके स्वाभाविक भोजन को भेज दिया था। तो अब वो लोग पछताए, फिर माफी मांगे कि ऐसा हमने गलती किया है, क्या वो किया। तो जो कुछ भी हो, यहां हम अगर कह रहे हैं कि जो भोजन मिले उसमें संतोष करना चाहिए, तो इसका मतलब सात्विक भोजन हुआ, राक्षसी भोजन नहीं, तो उसमें संतोष करना चाहिए। और भोजन में यदि व्यक्ति संतोष करता है तो स्वस्थ रहता है, निश्चिंत रहता है।
ने खाया और खा करके उस भोजन के विरह में मर रहा है जो उसे मिला नहीं है। हमारा एक मित्र है, अब तो नहीं है, पहले जब मैं इस्कान ज्वाइन नहीं किया था तो मेरे साथ रहता था, उसकी आदत थी कुछ भी खाने को आता था तो जो सामान नहीं होता था उसी की याद करता रहता था खाते समय, और कुछ भोजन मिल गया तो वो अचार रहता तो मजा है आ जाता है, अगर अचार है तो दही रहता है तो मजा आ जाता, ये रहता तो मजा आ जाता। मैं सुनते सुनते उब गया, कहा कि जो है उसमें क्यों नहीं मजा देख रहे हो, जो नहीं है उसमें मजा देख रहे हो। तो इस संसार में वास्तव में दुख इसमें नहीं है मनुष्यों को कि हमको वो नहीं है, समझ में दुख क्या है। जनरली संसार में आप विचार करके देखिए तो दुख यह है मनुष्यों को कि वह उसके पास है, हमारे पास नहीं है इसका दुख नहीं है, वह दूसरे के पास है इसका बहुत भारी दुख है, अगर सबके पास नहीं होता तो वह सुखी रहेगा। है ना, ये जनरल आइडिया है। अगर वो शुरू से ही गरीब रहे और सब लोग गरीब हैं तो हाँ ठीक है, लेकिन दूसरे के पास हुआ तो ये बहुत भारी दुख की बात हो जाती, ये संतोष का विरोधी भाव है। तो मन संतुष्ट होता है तो मन वह शुद्ध रहता है, और आत्मा कैसे शुद्ध होता है, आत्मविद्या, आत्मविद्या से आत्मा शुद्ध होता है, आत्मविद्या है भागवत, यह भागवत आत्मविद्या है, इसको बार बार कहा गया है, आत्मा माने भगवान, भगवान को समझाया गया। तो मैं यहां पर ये इसकी व्याख्या कर रहा था कि बादल अपना सर्वस्व दे करके शुद्ध हो गए, चमकने लगे शरद काल में, तो इसी तरह से वासनाएं छोड़ने के बाद और अपना सर्वस्व देने के बाद बड़े बड़े लोग शोभित होते हैं। बलि महाराज दान देने से पहले उतना शोभित नहीं थे जितना देने के बाद चमके, जब कर्ण ने अपना कवच कुंडल दान कर दिया, दान करने के बाद चमक गया, दधीची मुनि अपनी अस्थि दान करने के बाद विश्व विख्यात हो गया, शिवी महाराज अपना मांस दान किए, बादल अपना जीवन दान करता है, जल ही उसका जीवन है लेकिन अपना सर्वस्व दे देता है दूसरे के हित के लिए, तो बहुत प्रशंसा की गई है वास्तव में दान की। तो इस तरह से मनुष्य को ऐसा त्याग करके संतोष करना चाहिए। तो अब कह रहे हैं कि गिरय मुमचु तोयम क्वचि न वा मुमचु शिवम क्वचि न मुमचु शिवम जथा ज्ञानामृतम काले ज्ञानिनो दधते नवा। कभी कभी पर्वतों से जल गिरने लगता है, वर्षा काल में गिरता है और शरद काल में थोड़ा कम होते होते फिर बंद हो जाता और किसी समय जल नहीं गिरता है, आपने देखा होगा पर्वत से जल गिरता है, झरनों से या नीचे गुफा से भी, कभी जल बहता है कभी नहीं बहता है। ठीक वैसे ही जैसे ज्ञानी लोग भक्त जन योग्य अधिकारी पा करके ज्ञान देते हैं, नहीं तो नहीं भी देते हैं, चुपचाप रहा है। ऐसा देखा है जैसे नारद मुनि मृगारी को ज्ञान दिए, सब जगह ज्ञान नहीं देते हैं, जब योग्य अधिकारी मिलता है तो ज्ञान देते हैं, नहीं तो चुपचाप। या प्रहलाद महाराज चुपचाप थे, लेकिन जब असुर बालक उनको मिले, योग्य व्यक्ति मिल गए तो ज्ञान देना चालू किए। या जट भरत जी बिल्कुल चुप रहते थे, अपने को गूंगा मूर्ख बहरा जैसा दिखाते थे, लेकिन जब योग्य अधिकारी राजा रहुगण मिले तो उन्होंने प्रवचन चालू कर दिए, ज्ञान दिए। तो ज्ञानी लोग ज्ञानामृत का दान अधिकारी को पा करके करते हैं, नहीं तो चुपचाप रहते। जैसे पर्वतों से कभी जल गिरता है और कभी नहीं गिरता है, इससे उनको ये बात याद रहेगी। इसी तरह से ज्ञानी लोग कभी ज्ञानामृत बांटते हैं और कभी नहीं बांटते। अधिकारी मिल गया तो प्रवचन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब फिर गृहस्थों पर उक्ति ला रहे हैं, नैवा विदन छीय मानम जलम गाध चले चरा जथायु रन वहम छयम नरा मूढ़ा कुटुम्बिना। जैसे शरद काल में गड्ढों का जल दिन पर दिन सूखता जाता है, उसको गाध जल कहते हैं, थोड़ा पानी रहता है और भी सूखता जाता है। अगाध जल का अर्थ है बहुत ज्यादा पानी, लेकिन गाध जले चरा है, छोटे से गड्ढे में जीव रहते हैं, जलचर जीव, मछली आदि, और पानी दिन पर दिन घटता जाता है। पर वे मूर्ख जलचर ये नहीं जानते हैं कि पानी घट रहा है, और पानी के घटते ही हमारी क्या दशा होगी, हम मारे जाएंगे, मछली खाने वाले भी मार देंगे या ऐसे भी सट करके मर जाएंगे, वो नहीं जानते हैं। ठीक इसी तरह से कुटुम्बिनः मूढ़ा नरः, परिवार के पालन में व्यग्र गृहस्थ मूढ़, अनु अहम प्रतिदिन छीण होती हुई आयु पर विचार नहीं करते हैं। अपने हाथ से कैलेंडर भी बदलते हैं, डेट बदलते हैं टेबल पर, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि हमारा 24 घंटा गया है ना। वो केवल संसारिक प्लान परिवार आदि के विषय नहीं सोचते रहते। जथा आयु अनु अहम क्षयम्, वास्तव में आयु अनु अहम प्रतिदिन काटा जा रहा है। 24 घंटे का समय बीतता है तो 24 घंटा हमारे जीवन का गया और निरंतर बीत रहा है। जैसे कोई आदमी बक्से में रुपया रखा हो और हमेशा उसमें से निकलना चालू हो, एक आना, दो आना, चार आना, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया निकल रहा निरंतर, वैसे ही हमारे आयु कोष से 1 मिनट, 2 मिनट, घंटा, पल, सप्ताह, पक्ष, वर्ष निरंतर जा रहा है और एक दिन माइनस हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा, चले जाएंगे। लेकिन नरा मूढ़ा कुटुम्बिनः, खास करके कुटुम्बी और मूढ़, ये अपने प्रतिदिन कम होते हुए आयु पर विचार नहीं करते। प्रतिदिन आयु कम हो रही है ना किसी की तो बढ़ तो नहीं रही है कि नहीं? जितना कोटा है, जितना निश्चित आयु है, उसमें से प्रतिदिन घट रही है आयु। विवेकी लोग विचार करते हैं, विचार करके भगवान का भजन करते हैं, नित्य जीवन पाने के लिए, अमृत जीवन पाने के लिए बैकुंठ में वे, ये आयु घटे कोई बात नहीं है, आयु घटती है लेकिन भजन के साथ घटती है, कुछ कमा करके समय जाता है। जैसे मान लीजिए आज का समय बीता किसी का और उसने खूब नाम जप किया, भागवत सुना, पढ़ा, कोई बात नहीं। जैसे आपका बहुत धन खर्च हो गया रुपया, लेकिन उसके बदले बहुत अच्छा सामान मिल गया, तो रुपया खर्च होने का कोई ग्लानि नहीं होता, बल्कि प्रसन्नता होती है कि अरे यार तो सही दाम में मिल गया, सस्ता में मिल गया, रुपया घर से गया उसका कोई अफसोस नहीं होता, यदि सामान मिल जाए तो। एक दिन जीवन का गया कोई बात नहीं, यदि भगवान की भक्ति में गया तो ठीक है, और भगवान की भक्ति में नहीं गया, इस तरह से गया तब तो बहुत बड़ी हानि है। परंतु कुटुंब के पालन में रत रहने वाले लोग और मूढ़, देह को मैं और देह और सूत्र आदि को मेरा मानने वाले मूढ़ कहे जाते हैं, वे विचार ही नहीं करते हैं कि आयु घट रही है। इस तरह से तो एक प्रश्न होता है कि यदि कोई मनुष्य घर में दुराशय है, दुराशय का अर्थ है कि गृहम एव सर्वार्थ प्रदम इति दुष्टाभि प्राप्ति रहेगा, मान लीजिए क्वेश्चन किया गया, और जो व्यक्ति घटते ही आयु पर चिंता करेगा तो दुखी रहेगा। इस तरह से भी रोक तो सकता नहीं आयु को कटने से रोकेगा नहीं और रात दिन रोता रहेगा, तो इससे तो अच्छा है कि न याद करे तो उसका उत्तर देते हैं अगले श्लोक में, गाधवारी चरास्तापम अभिंदन सरदर्कजम जथा दरिद्र कृपणा कुटुंबी अभिजितात्मना। ऐसी बात नहीं है कि उसे दुख का अनुभव नहीं होता है। थोड़े जल वाले गड्ढे में रहने वाले जलचर जीव सूरज के ताप का अनुभव करते हैं, जब पानी गर्म हो जाता है दोपहर के समय तो उसमें वे छटपटाते हैं, गर्म पानी में रहते हैं, उनको दुख होता है लेकिन फिर भी घटते हुए जल पर विचार नहीं करते। खैर बेचारे जलचरों के लिए बाध्यता है कि वो जान भी जाए कि घट रही, पानी घट रहा है तो करेंगे क्या,
भाग करके स्थल पर तो जाएंगे नहीं है ना। यदि जलचरों को कोई बता दे कि पानी घट रहा है तो बेचारे क्या करेंगे, लेकिन किसी ऐसे कार्मिक से अपील करेंगे कि हमको ले चल करके अगाध जल में छोड़ दो। तो कोई करुणावान व्यक्ति यदि जलचरों को ले जाकर के अगाध जल में छोड़ देता है तो सुखी रहेंगे। सुखी नील जे नीर अगाध है, जिन हरि शरण में एक और बात है। तो ऐसे ही जब हमारी आयु घट रही है इस जगत में और हम दुखी हैं, तो हमें नित्य जीवन के लिए प्रयास करना चाहिए। तो उनको दुख होता है, शरदकालीन सूर्य के ताप से पानी गर्म हो जाता है, उसे छटपटाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई कुटुंबी हो और दीन हो, धन उपार्जन के लिए बहुत कष्ट सह रहा है लेकिन इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रखा है, धन उत्पन्न करके और धन को खर्च करने में बहुत तेज है, तो वह क्रीपर, वह इंद्रिय का गुलाम व्यक्ति दरिद्र क्षण क्षण में दुख भोगता है। उधर आयु भी घटती है और इधर दरिद्रता का दुख भी भोगता रहता है। जैसे मछलियां, उनका जल तो खत्म हो ही रहा है और दिन में तड़फड़ा जाती है, दुख होता है। खासकर के दरिद्र गृहस्थ की बहुत निंदा की जाती है, साधु दरिद्र रहे तो शोभा की बात है, लेकिन गृहस्थ को दरिद्र नहीं होना चाहिए। तो जो कुछ भी हो, किसी भी स्थिति में भगवान का भजन होना चाहिए। समय ही जहु पंकम स्थालिया नामम च दीर्घ जथा ममता धीरा शरीरा विश्वनात्मसु। अब समय हो गया तो कुछ देर रुक करके और फिर चालू करेंगे। हरे कृष्ण। अच्छा कोई प्रश्न है?
क्षर जी और अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष।
देखिए प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो इस टॉपिक से जुड़ा हो, बिल्कुल भिन्न प्रश्न ही होना चाहिए। प्रश्न पूछने के लिए कहा जाता है तो उसका मतलब होता है कि ये जो प्रसंग चल रहा है इसमें कोई बात समझ में ना आई हो, स्पष्ट ना हो या असंगत लगी हो तो उसे पूछना चाहिए। वो एक अलग टॉपिक है, एक अलग विषय है।
जो फिक्स है वो घंटों में
ये
जो फिक्स है वो घंटों में फिक्स होती है श्वासों।
अच्छा अच्छा जो भी हो जैसे भी हो लेकिन दोनों इंटर रिलेटेड है। सांस भी निकलती है समय के अनुसार ही, समय समय तो स्वतंत्र है, सांस आपकी रुके चाहे न रुके, चले या नहीं चले, समय तो चलता रहता है। तो अंततः समय ही माना गया, समय की मात होती है। कोई जरूरी नहीं है कि आप जल्दी जल्दी सांस लेकर बिता दीजिए या दीर्घ लीजिए, जब मरना है तो मरना ही पड़ता है। बच्चे जो जन्म लेते हैं और एक दो महीने के बाद मर जाते हैं, इसका मतलब ही नहीं कि पूरा सांस कंप्लीट कर लिए 90-100 वर्ष का। समय ही असली माप है, सांस में। हाँ धने, हाँ वो मैं देखिए प्रश्न इसको कहते हैं, मैं भोजन तक गया धन को छोड़ दिया, तो धन है, धन में संतोष करना चाहिए। शास्त्र यह नहीं कहता है कि कमाए में संतोष, का मतलब ये नहीं होता है कि चुपचाप बैठ जाए, कमाए लेकिन मन में पूर्ण शांति रख करके। जितना लिखा हुआ है धन उतना ही मिलेगा, कमाने के बाद भी जितना भाग्य में है पूर्व कर्मानुसार उतना ही मिलेगा, कमाना चाहिए लेकिन जितना मिल जाए उसमें संतोष करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, रात दिन प्रयास करना चाहिए धन कमाने के लिए, लेकिन प्रसन्नता के साथ। जैसे आपने देखा होगा किसी दुकान में नौकर रहते हैं तो वे काम करते हैं दिन भर, लेकिन वस्तु ज्यादा बेची जाए या कम बेची जाए उनको चिंता नहीं होती है और मालिक को बहुत चिंता होती है। वो संतुष्ट रहते हैं किसी भी हालत में, चाहे ज्यादा बेचा जाए कम बेचा जाए, और समय बीतेगा चले जाएगा। तो इस तरह से रहना चाहिए, काम तो वो भी करता है लेकिन संतुष्ट रहता है। तो काम करना चाहिए, धन कमाने का प्रयास भी करना चाहिए, धन जितना कमा सके आदमी कमाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन शांति के साथ, मतलब भगवान की भक्ति हो, संतोष हो, सब हो, सिवा कमाए। ये अशांत रह करके आदमी कमाएगा तो उससे फायदा क्या है, और उससे ज्यादा कमा नहीं पाएगा जितना लिखा है उतना। वो पहले पूछे थे, उनको पूछने भी पीछे। हाँ,
किस मात्रा में देना?
वो तो ये तो प्रैक्टिकल प्रश्न हो गया, लेकिन भगवान ने मात्रा तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मात्रा तो अपनी स्थिति पर निर्भर करता है, दाता की अपनी स्थिति है कि परिवार है, पुत्र है, आजकल तो अनेक टैक्स है, फोन बिल है, तो ये बिल है, वो बिल है, आगे का कुछ रखना है, सब करना है, ये सब मिला करके। लेकिन इसके साथ ही साथ यही देखना है कि भगवान का आदेश है देना, तो सब मिलाकर वो आदमी अपनी स्थिति मिलाएगा कि हमें कितना देना चाहिए। ऐसे जनरल नियम तो पहले का बनाया हुआ है, जबकि धन कमाने में सुविधा थी और धन पर बहुत टैक्स नहीं था, तो कहा जाता था कि धन का छठा हिस्सा दान कर देना चाहिए, ये नियम था शास्त्र का। और छठा हिस्सा तो सरकार ले लेती थी, लेकिन इसके बाद भी लोगों को बहुत बचता था, क्योंकि धन कमाने में बहुत बहुत तरह के खर्च नहीं होता था, पूंजी नहीं लगानी पड़ती थी कई तरह से। आजकल तो बहुत बहुत खर्च होता है, तब तो देश काल पर निर्भर करता है, किस स्थान पर किस काल में कितना हम अपनी बचत को मान रहे हैं और उसमें दे रहे हैं, पर सिद्धांत तो रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए परिवार में कितने लोग हैं, तो कुछ ही हो, हम गरीब हो चाहे धनी हो, परिवार को खिला रहे हैं, है ना, उसके अनुसार ही दान देने को मान लेना चाहिए। अब रहे कि किसको दें, ये बात विचारणीय है, इस बात पर बहुत विचार किया गया। भगवान ने तीन प्रकार के दान का वर्णन किया है, सात्विक दान, तामसिक दान, दान और राशिक दान। तो उसमें भी फाइनल भगवान कहते हैं कि जो देना हो मुझे दो, साफ बोलते हैं, भगवान छिपा करके नहीं बोले। जत करोसी जदस्नासी जज होसी ददासी जत जब तपस्सी कौन किया तत्कुरुष मदर, सीधा भगवान बोलते। अब यह प्रश्न है कि भगवान तो उसने रथ पर बैठे थे, कुछ ले जाकर डायरेक्ट दिया जाता तो ले देते, अब कहा थे देना है भगवान को निश्चित, लेकिन कहां दें, कहां से रियली भगवान को मिल जाएगा। तो इसके लिए कुछ है, ऐसे हैं निर्धारित पात्र है। जैसे मान लीजिए आपको अपना चिट्ठी भेजना है इंडिया, पत्र भेजना है अपने संबंधी के पास, तो आप उसके लिए ऑथराइज्ड बक्सा देखते हैं, पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं, पहुंच जाए। अब उस बक्से के देखा देखी कोई रोड मरम्मत होता है, बक्सा रखे रहते हैं, उसमें ले जाकर के डाल दे, ये कहीं उधर उधर डाल दे तो जाएगा नहीं, वो सीधे वेस्ट बिन में चला जाए, वो कूड़ा कर कूड़ेदान में चला जाएगा। तो फिर भी प्रश्न रुकता नहीं है, प्रश्न बना रहता है कि तो पात्र कौन है, किसमें डाला जाए तो भगवान के पास पहुंच जाएगा। इस पर भी विचार करके सातवें स्कंद भागवत में बताया गया है, जो भगवान के भक्त हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण शब्द वहां स्पष्ट दिया गया, क्योंकि पहले के ब्राह्मण सब भक्त होते थे, इसलिए वो दिया गया, तो वो पात्र हैं। जो भगवान के भक्त है यह है, उनको दिया जाता है, तो वे उस धन का उपयोग करते हैं ठीक से भगवान की सेवा में, या कभी कभी धन के उचित पात्र होते हैं, बहुत दीन दुखी भी, कोई गरीब है, कष्ट भोग रहा है, तो उसको देना भगवान को ही देना है, क्योंकि वास्तव में भगवान के पास तो कोई धन की कमी है नहीं। ऐसा नहीं कि यहाँ का कोई पैसा वैकुंठ में जाएगा तो भगवान के खाता में गिरेगा। भगवान चाहते इस जितने दुनिया में जीव है सब भगवान के, उनका हित किया जाए धन से तो भी भगवान की सेवा है, अब हित में आध्यात्मिक हित है, लौकिक हित है, कई प्रकार के विचार किए गए हैं, तो उस देश काल के अनुसार विचार करके अब तब मनुष्य को देना चाहिए। और विचार करने में दाता के लिए बहुत ज्यादा विचार की आवश्यकता नहीं है, सामान्य विचार करना चाहिए, एक एक बात की छानबीन नहीं की जा सकती, देने वाले की सदगति ही होती है यदि दान दिया तो। और ऐसे कोई जघन्य पापी हो, कसाई हो, आकर के कहे कि हमको गाय दे दीजिए और गाय दे दिया जाए तो दाता की भी अधोगति होगी। लेकिन जनरल है, नियम है कि दाता जो है वो देगा तो क्षण क्षण में देखेगा नहीं कि क्या हो रहा है, एक आइडिया लगा लिया कि भाई ये ठीक आदमी है, दे दिया, तो देने वाले का हित ही होगा, ये शास्त्र वर्णन करता है। लेकिन मुख्य बात तो लेनी चाहिए कि उसमें जीव का हित होना चाहिए, वो भगवान का प्रसाद खाए, भगवान का प्रसाद ही वस्त्र पहने, भगवान का प्रचार करने में लगा रहे, पुस्तक छापने में, मंदिर चलाने में, जैसे तैसे इस तरह से विचार कर लेना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए, क्योंकि अंततः हम व्यक्ति को ही देंगे। भगवान को देने का मतलब है भगवान के कुछ पात्र हैं उनको नहीं देंगे। मान लीजिए कोई पैसा डीटी को हाथ में पकड़ा दे तो डीटी क्या करेंगे, उनके कुछ पात्र हैं उनको देने पर वो उस पैसे का उपयोग करेंगे, बल्कि भगवान को भी खिलाएंगे, नहीं तो डीटी को दीजिए तो डीटी तो मार्केटिंग के लिए जाएंगे नहीं। इस तरह से पात्र होते हैं। आपका प्रश्न क्या था?
है दुकान
है
जी,
मैं अच्छा नहीं है, लेकिन शास्त्र भी बताता है दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, तो उसमें एक आपद धर्म होता है। आपद धर्म का अर्थ होता है विपत्ति के समय मनुष्य का कर्तव्य। तो आज के युग में वास्तव में प्रत्येक मनुष्य आपद में है, परिवार कैसे चलेगा, कैसे मेंटेनेंस होगा, कहीं कहीं ऐसी स्थिति है कि कोई शराब बेचने वाला आदमी शराब न बेचे तो फिर वो खाने बिना मरेगा। आपद धर्म में कुछ गलत काम किए जा सकते हैं, लेकिन गलत काम में भी कम गलत करना चाहिए कम से कम हो जाए यही चेष्टा करनी चाहिए। अब जैसे इस देश में है कि होटल चलाने का मतलब ही है कि मांस बेचना है ना, यहाँ शाकाहारी शाकाहारी भी तो चलता है ना, लेकिन अब जैसे पशुओं के लिए घास डालना जरूरी है, ऐसे मांसाहारियों के लिए तो मांस डालना जरूरी है, लेकिन उसमें गोमांस के लिए तो नहीं कहा जा सकता कि देना चाहिए उनको बाकी और तो दे सकते हैं। नहीं बदला जाए तब तो आपका धर्म नहीं है, ऐसी स्थिति हो कि उसके अलावा कोई दूसरा धंधा ही ना हो तो उसको आपद धर्म कहें, लेकिन उसके अलावा दूसरा हो सकता है तब आपद धर्म नहीं है, तो नॉर्मल धर्म है चलेगा। लेकिन जैसे ठीक है दान बच्चे हरे कृष्ण।